ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है इस गोवर्धन परिक्रमा कथा में आज के तृतीय दिवस पर। तो हमने पिछले कई दो दिनों में चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो वृंदावन है वह सर्वोत्कृष्ट धाम है, और ऐसे धाम के जो धामी हैं वो कृष्ण हैं, जो त्रिभंग ललित रूप में वृंदावन के केशी घाट में सदैव या बंशीवट में खड़े रहते हैं। और पीछे ये भी चर्चा हमने की थी कि किस प्रकार से जो गोवर्धन है उनका जो प्राकट्य इस भौतिक जगत में कैसे हुआ, आध्यात्मिक जगत में गोवर्धन का प्राकट्य कैसे हुआ। तो आज हमें विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हैं। जिस प्रकार से पिछले प्रवचन में हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से जो हनुमान है गिरिराज को उठाकर ले जा रहे थे, सेतु बंद जब हो रहा था, ब्रिज बनाया जा रहा था लंका के लिए भगवान राम के द्वारा, तो हनुमान जी को बीच में ही छोड़ दिया गया था, ब्रज में ही रखा गया था। तो फिर गोवर्धन को बीच में ही हनुमान जी ने छोड़ा, तो वो गोवर्धन हनुमान को शाप देने वाले थे, तो उसी समय हनुमान ने कहा कि नहीं नहीं, अभी जो आगे आने वाला जो द्वापर युग है उस युग में परम भगवान क्या करने वाले हैं, आपको उनके कर कमलों पर धारण करने वाले हैं 7 दिनों के लिए, और बहुत अधिक आपको आनंद प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से वो जो लीला है सारे शास्त्रों में गाई जाती है। तो इसलिए भगवत कथा को सुनने के लिए क्या होना चाहिए, व्यक्ति को हर समय उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार एक युवती है जिसका विवाह अभी नहीं हुआ है या किसी के घर में लड़की जन्म लेती है, तो बचपन से ही तैयारी हो जाती है उसको विदा करने की। तो पेरेंट्स जो माता पिता हैं वो पहले से ही तैयारी करते हैं कि अपनी पुत्री को हमें विदा करना है, तो पहले से ही उसके लिए धन, उसके लिए वस्तुएं, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए हम सब जीव उस युवती के समान है, हमें भी एक दिन क्या करना है, ये जगत से विदाई लेनी है, निकलना है बाहर। लेकिन उसके लिए हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी व्यक्ति ने सारी तैयारी कर दी अपने बेटी की विदाई करने की, लेकिन एक चीज को चूज नहीं किया। क्या चूज नहीं किया, पति कौन होगा, तो फिर बाकी सारी तैयारियां उचित है या अनुचित है? अनुचित है। तो उसी प्रकार से यदि कोई लड़की या माता पिता कहेगा कि नहीं चल जाएगा, कोई भी लड़का या किसी को भी हम चूज कर लेंगे, उससे उसका विवाह कर लेंगे, तो वो उचित नहीं है। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति इस प्रकार से कहता है कि किसी भी युवक के साथ विवाह किया जा सकता है, तो वो पागलपन है। जिसके पास जाना है उसके बारे में व्यक्ति को सही रूप से जानना होगा, समझना होगा, तभी क्या करना होगा, उस तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र वर्णन करते हैं कि श्रवणम के द्वारा हम हमारे जो परम लक्ष्य है भगवान को जान सकते हैं, जिनके ओर हमें क्या होना है, आगे अग्रसर होना है, जाना है, इस भौतिक जगत से विदाई देनी है। लेकिन आजकल के ये कैसे हम सीखते हैं, श्रवणम के माध्यम से सीखते हैं, चूज करते हैं अपने वर को, अपना जो पति है, इसलिए भगवान का एक नाम सर्वपति है। जो रुक्मिणी है उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में सुना और सुनकर ही उसने चूज किया कि मेरे पति कौन होने वाले हैं, कृष्ण, मैं तो ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी जो क्या है, हार्ड मांस, हाँ, मल आदि से, ब्लड, इन सब चीजों से बना हुआ जिसका शरीर है। हाँ, ये रुक्मिणी का व्रत था, रुक्मिणी का इच्छा था, और उसने वास्तव में श्रवणम के द्वारा चूज किया, हाँ, भगवान कृष्ण को पति के माध्यम से। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में श्रवण के लिए लालायित होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आता है, और वहां युधिष्ठिर महाराज जो कृष्ण के इतने प्रिय भक्त हैं, वो युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर कृष्ण नारद को पूछते हैं कि हे नारद, आप बताइए, मैं तो ग्रह मूढ़धी हूं, ग्रह मूढ़धी, धी मीन्स बुद्धि, कि मेरी बुद्धि सदैव घर गृहस्थी के कार्यकलापों में लिप्त रहती है, आप मुझे ऐसा उपाय बताओ कि जिसके द्वारा मैं कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर सकता हूं। तो नारद मुनि, अब देखो युधिष्ठिर महाराज अपने आप को इतना नीच समझ रहे हैं कि मैं ग्रह मेदी हूं, भौतिक कार्यों में सदैव मग्न हूं, आप मुझे उपाय बताओ कि जिसके द्वारा जो सन्यासियों को गति प्राप्त होती है वो गति मुझे प्राप्त हो जाए। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि एक बहुत सरल उपाय है भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करने का, और वो क्या है, नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि केवल एक गृहस्थ व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अपने आप को वासुदेव के चरणों में समर्पित करना चाहिए, और जो भगवान के भक्त हैं उनके मुखारविंद से क्या करना चाहिए, भगवान के नाना अवतारों की कथा को नियमित रूप से सुनना चाहिए, मीन श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहिए। हाँ, ये सबसे इजी वे है, इजी तरीका है भगवान के चरण कमलों में स्थिर होने का। आजकल तो बहुत कठिन है, कथा सुनना है तो पहले से डील होती है, हम 7 दिन की भागवत करेंगे, हाँ, कितना हमारा ये होगा, धन हमें कितना मिलेगा, 5 लाख, 2 एक दिन का 1 लाख, हाँ। तो ये पद्म पुराण ऐसी कथाओं का वर्णन करते हुए कहता है कि जहां भी कृष्ण कथा होती है और धन का लेन देन होता है, वो कृष्ण कथा रजोगुनी है, उस कथा से ना वक्ता की शुद्धि होगी ना श्रोताओं की शुद्धि होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक व्यापार बना हुआ है, क्योंकि कृष्ण कथा भगवान के बारे में क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि हमें भव बंधन से मुक्त होना है। अभी कथा शुरू होने से पहले पैसे का बंधन डाल दिया तो फिर वो व्यक्ति कैसे मुक्त हो सकता है, क्या सामर्थ्य है। भव, भव ये शिव जी का एक नाम है, क्योंकि वो किसके पति है, भवानी के पति है, इसलिए शिव जी को भव कहते हैं। हाँ, इसलिए हाँ कृष्ण के बारे में सुनना ये बहुत ही लाभप्रद है और शक्तिशाली है। जैसे हम भगवान के बारे में सुनना शुरू करते हैं उसी क्षण हम कृष्ण से चिपकना शुरू हो जाते हैं, चिपकने का मतलब है अटैच्ड होने लगते हैं, कृष्ण के बहुत अधिक नजदीक आते हैं। तो भगवान के प्रति हम सब जीवों का स्वाभाविक आकर्षण है, लेकिन अभी क्या हो गया है, भगवान के प्रति जो स्वाभाविक आकर्षण है, प्रेम है, स्नेह है, वो अभी ढक गया है। जैसे आप जाएंगे, यहां एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है। क्या है चित्र? एक बच्चा हैंडपंप को दबा रहा है लेकिन पूरा लटक गया है, लेकिन पानी का एक बूंद भी नीचे नहीं गिर रहा है। तो आप राजस्थान आदि में जाते हैं या किसी गांव में जहां पानी निकाला जाता है हैंडपंप से, तो कई बार लोग गर्मी के दिनों में पूरा प्रयास करते हैं हैंडपंप को दबाने का, लेकिन पानी नहीं निकलता लेकिन हवा निकलती है। पूरा समय लगाते हैं लोग, लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग भी होते हैं, वो क्या करते हैं, एक बाल्टी लेके जाते हैं और एक मग्गा ले जाते हैं और उसमें पानी भी लेके जाते हैं साथ में, आधा बकेट या थोड़ा बकेट पानी ले जाते हैं और क्या करते हैं, उसमें जाके डालते हैं। और डालने के बाद जब वो हैंडपंप को जोर लगाते हैं तो तुरंत पानी क्या होता है, निकलने लगता है। तो क्या था रीजन जिसके कारण पानी नहीं निकल रहा था? कारण यह था कि क्योंकि वैक्यूम, वैक्यूम को क्या कहेंगे हिंदी में, हवा, दबाव, दबाव हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट होने के कारण पानी नहीं निकलता। तो वैक्यूम को नष्ट करने के लिए क्या किया गया, जल डाला, और जैसे वैक्यूम खत्म हो जाता है जल डालने से, तुरंत पानी निकल के बाहर आता है। तो ये वास्तव में जो वो एक्स्ट्रा पानी लेके जाने का वो काम क्या है, कृष्ण कथा को सुनना। जैसे हम सुनते हैं क्योंकि हजारों जीवनों से हमारे अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया है और वो नष्ट होगा जब हम कानों के माध्यम से क्या करेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए ये बहुत सरल उपाय है भगवान की ओर अग्रसर होने का। तो पिछली बार हमने सुना था धामवासी के बारे में कि श्रीमती राधिका कृष्ण का गुणगान करते हुए कहती हैं, हाँ क्या कहती है श्रीमती राधिका, हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। हंतमिस, देखो देखो आश्चर्य से वो कह रही हैं, अद्रि रबला हरिदास वर्यो, इस हिल को देखो, गोवर्धन को देखो। ये गोवर्धन क्या है, भगवान के जो महान महान भक्त हैं, उत्कृष्ट जो भक्त हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए भगवान को या गोवर्धन को हरिदास वर्य कहा गया है। तो ऐसे जो हरिदास वर्य हैं, वो बाकी जो हरिदास हैं जिनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि तीन प्रकार के हरिदास हैं। एक हरिदास कौन से थे, श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर महाराज, जिनको हरिदास कहा गया है। और जो दूसरे हरिदास हैं वो है उद्धव। यहां से ना एंट्री बंद कर दीजिए आप, यहां से बिल्कुल वहां से जाए या सीधा बैठे, दर्शन बाद में कर सकते हैं, क्लास के बाद दर्शन, बाद में दर्शन कर सकते स्ट्रिक्टली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ समय हमारे पास है तो अटेंटिव श्रवण करने का प्रयास करें। तो श्रीमती राधिका कृष्ण का गुणगान करते हुए कहती हैं कि ये जो गिरिराज गोवर्धन है, ये वास्तव में हरिदास वर्य है, क्योंकि हर प्रकार से वो अपने आप को भगवान कृष्ण की दिव्य सेवा में मग्न रखते हैं। क्योंकि जो गोवर्धन है, हाँ पिछली बार हमने इसका अर्थ बताया था कि गो का अर्थ है गाय या इंद्रिया, वर्धन का अर्थ है जो बढ़ाने वाली है, आनंद की वृद्धि करने वाली है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण का एक भी दिन ब्रज में ऐसा नहीं बीतता कि जिस समय कृष्ण गोवर्धन के ऊपर नहीं जाते। और ये जो गोवर्धन है केवल अपने आप को कृष्ण की सेवा में ही नियुक्त नहीं करता, बल्कि कृष्ण से संबंधित हर वस्तु की सेवा में अपने आप को लगाता है। गोपिकाएं हैं, ग्वाल बाल है, गव्य है, बछड़े हैं, ब्रजवासीज है। हाँ, तो ऐसा गोवर्धन कृष्ण की सेवा करता है, भगवान कृष्ण को सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हुए। भगवान कृष्ण को जब आराम करना है तो उनको कंदराएं प्रदान करता है, गुफाएं हैं। भगवान कृष्ण को किसी पत्थर के ऊपर लेटना है तो जब ठंड के दिन है तो वो पत्थर गर्म हो जाता था, गर्मी के दिन में क्या प्रदान करता है, शीतलता। भगवान कृष्ण जब बलराम आदि के साथ घास में लेटना होता है तो वो घास बहुत अधिक मुलायम हो जाता है कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए। तो ऐसा गोवर्धन के ऊपर का जो घास भी है वो इतना शक्तिशाली है, गवों के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। वो जो घास जो ब्रज की गवे गोवर्धन का घास खाती हैं, उन घास में पांच प्रकार के प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम कहता है कि जो घास है, पहला प्रभाव क्या था घास का जो गोवर्धन के ऊपर बढ़ता है, सुगंधित घास। घास कैसे होता है गोवर्धन का, सुगंधित, कि सारी ब्रज की गवें आकर उसको ग्रहण करती हैं। और दूसरा लक्षण बताते हुए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो घास है सुकोमल, इतना अधिक कोमल होता है। और तीसरा वो वर्णन करते हैं पुष्टिवर्धन, केवल वो घास स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि गव्य उसको जब खाती है तो उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। और चौथा वर्णन श्रीमती राधिका स्वयं करती हैं गुणगान करते हुए गोवर्धन का, दुग्ध संपक। दुग्ध संपक का मतलब है कि गोवर्धन में गव्य जब ये घास खाती हैं तो वो केवल लिमिटेड दूध नहीं देती, कितना दूध देने लगती है फिर, अनलिमिटेड। तो इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत अधिक विस्तार से वर्णन गिरिराज का हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे गिरिराज कृष्ण को नाना प्रकार से अपनी सेवा प्रदान करते हैं। तो ऐसा वृंदावन इनके कारण, गोवर्धन के कारण क्या है, वृंदावनम सर्वकाल सुखावह। वृंदावन गोवर्धन के कारण हर समय सुखावह होता है, सुख का अनुभव होता है। तो ऐसे गोवर्धन के प्रति अलग अलग भक्तों का बहुत अधिक प्रेम स्वाभाविक रूप से है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है वो गोवर्धन के प्रति था। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु जब श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस मंदिर में लेक्चर दे रहे थे भागवतम, तो उस समय उन्होंने अपने भक्तों को पूछा हु इज लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो कई भक्तों ने हाथ ऊपर करके कहा कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं। प्रभुपाद ने कहा नहीं, चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ, चैतन्य महाप्रभु साक्षात कौन है, कृष्ण है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कैसे हैं, अलग अलग ग्रंथों में वर्णन आता है जिनमें कहा गया है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो राधा कृष्ण से अलग नहीं है। तो एक बार जब कृष्ण द्वारका में थे द्वापर युग में, तो उस समय रुक्मिणी के साथ भगवान कृष्ण उनके महल में बैठे थे। और रुक्मिणी जैसे भगवान शाम के समय अपने सुधर्मा सभा से वापस आते हैं, वापस आकर कृष्ण एक आसन में बैठे हुए थे, तो रुक्मिणी आती है और भगवान की सेवा करने लगती है, चरणों की सेवा करने लगती है। तो भगवान के चरण कमल इतने अधिक मुलायम है, कमल से भी अधिक, उन चरण कमलों को रुक्मिणी देवी अपने गोद में रखते हुए उनकी मसाज कर रही थी। और मसाज करते करते उनके नेत्रों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी। तो कृष्ण देखते जा रहे थे कि ये रुक्मिणी तुम क्यों रो रही हो, मेरे चरणों को पकड़कर उनकी मसाज करते हुए मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंसुओं की धारा से मेरे जो चरण है वो क्या हो गए, पूरी तरह से भीग गए हैं, गीले हो गए हैं। तो रुक्मिणी कहती है कि आपको इसका पता नहीं चलेगा, आपके चरणों की सेवा करने से या आपके प्रति प्रेम करने से जो दिव्य आनंद हमें अनुभव होता है, श्रीमती राधिका को जो अनुभव होता है, वो आनंद आपको पता नहीं चलेगा। तो कृष्ण कहते हाँ, तो रुक्मिणी के वचन सुनकर कृष्ण ने पहली बार ऐसी कोई चीज सुनी थी। क्या सुना था? कि मेरे सेवा या मेरी भक्ति या मेरे प्रति प्रेम करके एक विशेष आनंद मेरे भक्तों को प्राप्त होता है, जो आनंद मुझे अनुभव नहीं हो रहा है। तो भगवान कहते हाँ, कि जिस प्रकार से कोई माँ अपने बच्चे की सेवा करती है तो बच्चे को एक विशेष आनंद मिलता है, लेकिन जो आनंद बच्चे को मिल रहा है वो माँ अनुभव नहीं कर सकती। माँ को बच्चे का स्थान लेना पड़ेगा तब वो अनुभव करेगी वो आनंद। तो उसी प्रकार से भगवान को वो आनंद पता नहीं है कि उनके भक्तों को उनकी सेवा, उनसे प्रेम या उनकी भक्ति करके कितना आनंद महसूस होता है, वो किसको पता नहीं है? भगवान को पता नहीं है। लेकिन पहली बार जो रुक्मिणी ने कृष्ण को रिवील किया कि आपको वास्तव में ये आनंद अनुभव करना है तो आपको श्रीमती राधिका का या मेरा स्थान ग्रहण करना पड़ेगा, आपको भक्त बनना पड़ेगा, तब आप भक्त का भक्ति के द्वारा जो आनंद की अनुभूति उसे होती है वो तब आप समझ पाओगे। तो उस समय कृष्ण निर्धार करते हैं, कृष्ण सोचते हैं, आपने करे भक्ति भाव अंगीकारे, आपन मतलब स्वयं भगवान कृष्ण ने क्या किया, भक्ति भाव या भक्त का जो भाव है वो अंगीकार किया और वही कृष्ण क्या बने, श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण वही है, अंतर गौर बहिर 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 गौर अंत कृष्ण। तो वही कृष्ण जब अपने भक्त की सेवा भावना को समझने के लिए क्या करते हैं, श्रीमती राधिका का जो अंग कांति है, उनका जो गोरा वर्ण है उसको धारण करते हैं, श्रीमती राधा रानी का जो सेवा का मूड है, सेवा की भावना है कृष्ण के प्रति, उसको धारण करते वही कृष्ण और कलियुग में किस रूप में अवतरित होते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। और उनके साथ कौन है? हाँ, बलराम है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जिनको कहा जाता है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, राधा कृष्ण के मिलित विग्रह, वही कृष्ण केवल राधा रानी के अंग कांति को और सेवा की भावना को स्वीकार करते हैं। और कलियुगा में 522 साल पहले बंगाल में नवदीप मायापुर में अवतीर्ण होते हैं, उन्हीं कृष्ण को क्या कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु। राधा कृष्ण जब मिलते हैं तो वो कौन बन जाते हैं, कृष्ण बन जाते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हमें बहुत दिव्य शिक्षा प्रदान करते हैं। और वो क्या शिक्षा है कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जिस भी व्यक्ति को यह मनुष्य जीवन मिला है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का असली लक्ष्य क्या है। और चैतन्य महाप्रभु अपनी शिक्षाओं के द्वारा हमारे जीवन का जो असली लक्ष्य कौन है, हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, भगवत प्राप्ति है, वो शिक्षा हमें प्रदान करते हैं। हाँ, जैसे कि आपने वो सुना होगा श्रील प्रभुपाद वो कथा बताते हैं कि एक बार एक जो वैज्ञानिक है वो जाता है गांव में, आता है एक नाव में बैठता है, तो नाविक बेचारा बहुत अधिक गरीब था। वो नाविक को कई प्रकार के प्रश्न पूछने लगता है कि मैं तो अमेरिका से आया हूं, मेरे पास ये ज्ञान है वो ज्ञान है, आपको इस विषय का ज्ञान है क्या, मोबाइल के बारे में जानते हो क्या। तो बेचारा नाविक तो मूर्ख की तरह वो कहता है कि मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। तो ये जो वैज्ञानिक है, ये जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उस नाविक को नीचा दिखाते हुए नाना प्रकार से उसको कह रहा था कि आपका इतने प्रतिशत आपका जीवन बेकार है, 20%, 40%, 80%, आपको इसका ज्ञान नहीं है, उस विषय का ज्ञान नहीं है। तो लेकिन फाइनली जब नाव चलाते चलाते बहुत बड़ा तूफान आता है और वो क्या कहता है, नाविक आपको तो सब प्रकार का ज्ञान है, लेकिन महाशय, ओ मिस्टर, आप मुझे ये बताओ कि आप तैरना जानते हैं कि नहीं, तो उसने दोनों हाथ जोड़े और उन्होंने कहा मैं सब जानता हूं लेकिन तैरना नहीं जानता। तो हमने भी अपने जीवन के कई प्रकार के लक्ष्य बनाए हैं, लेकिन वास्तव में हमने यदि कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया तो इस भव सागर में हम निश्चित रूप से डूब सकते हैं। तो इसी कारण शास्त्र कहते हैं या चैतन्य महाप्रभु बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। ऐसे कृष्णा वही कृष्ण है जो त्रिभंग ललित रूप में खड़े हैं, क्योंकि कृष्ण कैसे हैं, टेढ़े हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम है बाके बिहारी। बाके का मतलब क्या है, जो तीन स्थानों में वक्र हैं, टेढ़े हैं, उनको जानना भी बड़ा कठिन है। टेढ़ा का मतलब है क्रूकड़, एक प्रकार से जैसे हम कहते हैं ना ये व्यक्ति बहुत टेढ़ा है, उसके पल्ले मत पड़ो, उससे दूर रहो। हाँ, तो फिर हम ऐसे व्यक्ति से दूर रहते हैं, उसको समझना बहुत कठिन होता है। लेकिन वही कृष्णा कलियुगा में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और उनको समझना बहुत अधिक सरल हो जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हर एक जीव को प्रदान करते हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए, वहां कुर्म क्षेत्र में जब गए विशाखापट्टनम के पास, तो वहां वो एक ब्राह्मण से मिले और उस ब्राह्मण से मिले तो उस ब्राह्मण के घर वो रहे। ब्राह्मण ने कई प्रकार से उनकी सेवा की और उस ब्राह्मण जब चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह निकल रहे थे आगे अपने ट्रैवलिंग के लिए, तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं आपके साथ आना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उन्होंने कहा मैं तो अब घर है, गृहस्थी है, बहुत सारी जिम्मेदारी है, मैं तो पूर्ण रूपे ने क्या करना चाहता हूं, आपके जैसे ही जीवन यापन करना चाहता हूं, कृष्ण भक्ति में लगना चाहता हूं, इन सब चीजों को त्याग करके। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, यदि तुम अपने जीवन में इन तीन कार्यों को करते हो तो कृष्ण आपके घर में आकर क्या करते हैं, निवास करते हैं। केवल आपको अपने जीवन में तीन कार्यों को करना होगा। तो उन ब्राह्मण ने पूछा कि क्या करना चाहिए मुझे, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या करना चाहिए, सबसे पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे घर में कृष्ण स्वयं निवास करे, उस व्यक्ति को तीन कार्य करने चाहिए। और सर्वप्रथम क्या है, नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का उच्चारण करना, कृष्ण के नामों को अपने जीवन में क्या बनाना, प्रिय बनाना। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि रोज व्यक्ति को भगवद गीता श्रीमद भागवतम को सुनना या क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और तीसरी चीज चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। आप जिसके भी संपर्क में आते हो उस व्यक्ति को भगवान के बारे में बताओ, उस व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए जगन्नाथपुरी से वृंदावन आ रहे थे, तो आते आते वो कहां पहुंचे, झारखंड के जंगल में। और जब झारखंड के जंगल में पहुंचे तो सारे वो एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए, तो वह बहुत सारे हाथी स्नान कर रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत ही थोड़ा सा जल अपने हाथ में उठाया और उन हाथियों के ऊपर फेंका, तो हाथी वहां क्या कहने लगे, कृष्ण कृष्ण, क्या कहने लगे। और वहां से स्नान करके महाप्रभु जब उस झारखंड के जंगल से गुजर ही रहे थे तो बहुत सारे शेर हिरन मोर आदि बंदर सारे प्राणी इकट्ठा आ रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि एक शेर वहां सो रहा था, चलते चलते उनके पांव का अंगूठा एक शेर को स्पर्श करता है, उसी क्षण शेर उठ जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा बलह कृष्ण कृष्ण बोलो, वो शेर उठता है। एक ही नहीं उठा शेर, कितने शेर उठे वहां, कई सारे शेर उठे हैं और वो कृष्ण कृष्ण कहने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, पात्रा पात्र विचार नाही नाही स्थाना स्थान। तो भगवान कृष्ण वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और सब जीवों को भगवान की शरण प्रदान करते हैं बहुत सरल रूप से। वो ये नहीं देखते कि कोई व्यक्ति योग्य है या अयोग्य है, हर एक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति वो प्रदान करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में आए तो उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा की थी, साक्षात कृष्ण है। हाँ, लेकिन अपने आचरी प्रभु सिखाए सबारे, अपने आचरण से भगवान क्या करते हैं, सारे जीवों को सिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब गोवर्धन परिक्रमा करने लगे तो उस समय गोवर्धन में जितने भी हिरण है, मोर है, बंदर आदि है, सारे गव्वे आदि है, वृक्ष है, लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सब अटेंटिव हो गए और उनको ये भावना जागृत हुई, ये महसूस होने लगा कि अभी फिर से वृंदावन में कौन आए हैं, कृष्ण आए हैं। और हर हिरण या हर वृक्ष नीचे हो जाता था उनकी सेवा करने के लिए, उनको पुष्प अर्पित करता था, उनको फूल देता था, उनको शहद देता था। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु परिक्रमा करते हैं वृंदावन में आकर। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं, तबे चले आयला प्रभु सुमन सरोवर, तहा गोवर्धन देखी हयला विवर। जो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ गोवर्धन की जो परिक्रमा कर रहे थे, करते करते वो सुमन सरोवर, हाँ, गोवर्धन परिक्रमा का एक स्थान है जिसको कुसुम सरोवर कहते हैं, वहां आए और वहां से वास्तव में गोवर्धन दिखना शुरू हो जाता है कुसुम सरोवर से। वहां जब उन्होंने गोवर्धन की शिला को देखा तो उन्होंने क्या किया, आलिंगन किया। गोवर्धन देखी प्रभु हैला दंडवत, एक शिला आलिंगिया हैला उन्मत। जैसे गोवर्धन को उन्होंने देखा तुरंत दंडवत प्रणाम किया, दंडे के समान। ये पूर्ण शरणागति का लक्षण है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस गोवर्धन शिला का आलिंगन करते हैं, हाँ, और उनको नाना प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे तो एक शंकरारण्य सरस्वती नाम के एक सन्यासी वृंदावन आए थे। तो वो जब जगन्नाथपुरी गए वो सन्यासी, तो उन्होंने एक अपने साथ गुंजामाला और एक गिरिराज की शिला, हाँ, वो लेके गए। और जगन्नाथपुरी में जाकर चैतन्य महाप्रभु को वो गोवर्धन शिला उन्होंने प्रदान की। तो गोवर्धन शिला, जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी कि वो कृष्ण से क्या है, अभिन्न है, साक्षात कृष्ण है, हाँ, ब्रजेंद्र नंदन, हाँ, साक्षात वो कृष्ण है। तो जब चैतन्य महाप्रभु को वो शिला उन्होंने प्रदान की तो उस समय चैतन्य महाप्रभु उस शिला को अपने छाती से लगाते हैं, अपने आंखों से लगाते हैं, माथे में लगाते हैं और निरंतर उस शिला की सेवा करते हुए अश्रुपात किया करते थे। और जब भी उस शिला को अपने हाथ में रखते थे सदैव कृष्णदास कविराज कहते हैं कि वो गोवर्धन शिला, चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण के प्रति इतना अधिक प्रगाढ़ प्रेम था कि उस प्रेम के कारण जो उनके आंसू बह रहे थे उससे हमेशा गीली रहती थी गोवर्धन शिला। तो गोवर्धन शिला कोई सर्वसामान्य पत्थर नहीं है, हर शिला क्या है, कृष्ण है। और इतना सरल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जाए और वहां से उठा के घर ले आए और उसकी पूजा शुरू करें, नहीं। गोवर्धन तो केवल आध्यात्मिक गुरु के द्वारा वो शिला हमें प्राप्त होती है, या तभी व्यक्ति को लाके उनकी सेवा करनी चाहिए, अन्यथा कई प्रकार के अपराधों का वर्णन शास्त्रों में आता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने गिरिराज शिला की सेवा 3 साल के लिए की। नेत्र जल से शिला भिजे निरंतर, शिला रखे न प्रभु कृष्ण कलेवर। कि ये जो गोवर्धन शिला है ये साक्षात कृष्ण का शरीर है, कृष्ण है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने उनकी सेवा की और आगे चलकर वो जो उनकी जो सेवा की हुई शिला है, ये गोवर्धन शिला उनके पास हुआ करती थी जिसकी सेवा चैतन्य महाप्रभु करते थे। और उनका इतना अधिक प्रेम उस शिला से था कि उन्होंने एक दिन जब वो उठाने लगे गिरिराज शिला को तो उनके अंगूठे का निशान क्या हो गया, उस शिला में हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने हाथ लगाया तो वो शिला मक्खन के समान पिघलने लगी, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के कारण। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो प्रीति है गोवर्धन के लिए बहुत अधिक था, और उन्होंने वही जो शिला है आगे चलकर रघुनाथ दास गोस्वामी जो वृंदावन के 6 गोस्वामी हैं, जिन्होंने वृंदावन को प्रकाशमान किया, उन 6 गोस्वामियों में से एक रघुनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने ये जो गोवर्धन शिला है वो अर्पित की थी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात कृष्ण है उनका बहुत अधिक गहरा जो प्रेम श्री गोवर्धन के प्रति है। तो श्रीमद् भागवतम वर्णन करता है कि कृष्ण सदैव अपने नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं और उन लीलाओं को प्रकट करने का एकमेव कारण है, और वह एकमेव कारण क्या है, इति दृक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जान्तम आख्यापयन्तम। सत्यव्रत मुनि दामोदर अष्टकम में कहते हैं कि ये जो लीला है कृष्ण क्या करते हैं, अलग अलग लीलाओं को करके अपने जो भक्त हैं व्रजवासी हैं उनको आनंद के सागर में डुबा देते हैं। स्वघोषम, स्वघोषम मीन्स ब्रजवासी। तो भगवान कृष्ण केवल वृंदावन में दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं, उनका एक में उद्देश्य है कि भक्तों को क्या करना, आनंद प्रदान करना, यही एकमेव कारण है। ये गोवर्धन को धारण करने की जो लीला है उसका यही एकमात्र उद्देश्य है कि ब्रजवासियों को दिव्य आनंद प्रदान करना। कृष्ण बहुत छोटे थे, एक बार तो वो बछड़ों को ये करते थे, संभालते थे। तो गो पूजा का समय था, यशोदा माता ने कहा कि ओ कृष्णा आप क्या करो, एक एक, एक बछड़े को ले आओ, हमें उनकी पूजा करनी है। तो कृष्ण गए कि शांत कीजिए उनको, कृष्णा गए बछड़े को लाने के लिए, और वो लेके आए और देखा कि जाते जाते देखा कि जो मक्खन और दही है हम वो छीके के ऊपर क्या हुआ है, टंगा हुआ है। अभी बछड़े को अंदर लेके जाना था कृष्ण को, और कृष्ण छोटे थे उनका हाथ भी नहीं जा रहा था। तो भगवान कृष्ण को एक आइडिया आई, क्या सोचा उन्होंने, इसके ऊपर बैठ जाओ। उस बछड़े के ऊपर बैठ गए, छोटे से थे, और बछड़ा अंदर जा रहा था महल के अंदर। तो देखा कि भगवान ने उसको छीके के नीचे ले लिया और उसको पकड़ लिया। कृष्ण ने क्या किया, उस छीके को पकड़ा और थोड़ा सा हाथ ऊपर डालते कि नहीं तो बछड़ा नीचे से गायब हो गया। कृष्ण लटकते ही रह गए, यशोदा माता चिल्ला रही है कोथाए कृष्ण, कोथाए कृष्ण, कहाँ है कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं केवल अपने भक्तों का आनंद वर्धन करने के लिए। हाँ, जैसे आप सुनते हैं कि एक गोपी थी कलावती, वो हमेशा कंप्लेन करती रहती थी। कलावती क्या कंप्लेन करती रहती कि ये सदैव आता है और हमें परेशान करता है, हमारा मक्खन आदि को चुरा के ले जाता है। उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूंगी, रंगे हाथ पकड़ूंगी, रंगे हाथ, रेड हैंड कहते ना, क्या कहते इंग्लिश में, रेड हैंड, हम कहते व्हाइट हैंड। भगवान को कैसे पकड़ने वाले थे वो, व्हाइट हैंड, रेड हैंड नहीं। तो उसने सोचा, बल्कि ये जो वृंदावन की गोपियां हैं वो एक ही ताक में रहती थी, उनको तो आनंद आता था, लूट ले हमारा मक्खन जाए। वो बनाती इसलिए थी, कृष्ण को कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो बनाती इस भावना से थी कि कृष्ण आके इसको चुरा के ले जाए, ये मेन उनका उद्देश्य था सेवा करने का। तो फिर कृष्ण जानबूझकर जाते थे, और कृष्ण जब मक्खन चुराने के लिए जाते थे तो कुछ नहीं मिलता था, तो उनके जो बच्चे थे उनके कान में पानी डाल के चले आते थे, अब बहुत सारी मस्ती करके भाग जाते थे। तो एक दिन एक कलावती बिल्कुल चुपके से बैठी, कलावती ने उनको देखा कृष्ण को, और कृष्ण को व्हाइट हैंड पकड़ा, और पकड़ के वो ला रहे थे, किसके पास ला रहे थे कि आज आपकी खैर नहीं है, आपको आज यशोदा माता के द्वारा दंडित होना होगा। तो कलावती, ब्रज की जो स्त्रियां हैं घूंघट डाल के चलती है कि नहीं, तो कलावती ने तो घूंघट डाला हुआ था और हाथ में किसको पकड़ा था, कृष्ण को, बाल कृष्ण को पकड़ा था। तो कृष्ण को जब वो ले जा रहे थे नंद महाराज के महल के सामने गए, ओ यशोदा ओ यशोदा, यशोदा माता आ गई। क्या हो गया कलावती? तो उस समय यशोदा माता दौड़ के बाहर आई कि आज मैंने आपके पुत्र को रंगे हाथ पकड़ा है। तो यशोदा माता आती और कहते कि देखो इतना हर बार हम आपको कंप्लेंट कर रहे थे, इसको आप बांध के रखो, बाहर जाने मत दो। तो बहुत सारी कंप्लेंट करने लगी, बताने लगी। तो देखते कि ये आपका बाल कृष्ण है, अभी इसने तो घूंघट डाला था, इसको क्या पता कौन है यहाँ हाथ में। तो यशोदा माता कहते आप ठीक से देखो, तुम्हारा बेटा है या मेरा बेटा है। तो ये कलावती ने अपना घूंघट खोला, देखती है तो खुद के बेटे को पकड़ के ला रही है यशोदा माता। ये लज्जित हो जाती है कलावती, और फिर जब वापस अपने बेटे को ले जाती है, थोड़ा दूर ले जाती है, तो कृष्ण अपने फिर से मूल रूप में आते हैं। कहते कलावती आज मैंने तुम्हारे बेटे का रूप धारण किया था, अगली बार तुम्हारे पति का रूप धारण करके आऊंगा। तो वास्तव में भगवान का एक में उद्देश्य है वृंदावनम सर्वकाल सुखावह, सुख या आनंद अपने भक्तों को अपने दिव्य लीलाओं के द्वारा प्रदान करना। तो ऐसा है वृंदावन में जब अश्विन मास होता है, तो उस समय वो अश्विन मास यज्ञ करने के लिए बहुत अधिक अनुकूल या पवित्र माना जाता है। नाना प्रकार के यज्ञ सारे ब्रजवासी करने लगते हैं, और कुछ समय के लिए ब्रजवासी अपने स्थान से दूसरे स्थान के लिए निवास करने के लिए जाते हैं। तो जब भगवान कृष्ण गोचारण कर रहे थे, गवों को चरा रहे थे, तो एक बार उनके जो सखागण है उनको बहुत अधिक भूख लगती है। तो भगवान कृष्ण कहते कि जाओ नजदीक की कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ शाला में जाओ और उन ब्राह्मणों से याचना करो कि हमें क्या चाहिए, कृष्ण और बलराम चारागाह जंगल में हैं, गवों को चरा रहे हैं, उनके लिए कुछ भोजन चाहिए। तो भगवान का नाम लेकर ये चले गए, तो उन ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं मिलेगा, भागो यहां से। फिर वो गए तो भगवान ने कहा आप क्या करो, उन ब्राह्मणों के पास मत जाओ, वो अपने आप को यज्ञ आदि करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको यज्ञ का उद्देश्य पता नहीं है। यज्ञ करने का गोल क्या है, क्यों कर रहे हैं हम यज्ञ, इसका लक्ष्य क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए है। क्योंकि भगवद गीता कहते हैं यज्ञार्थात कर्मण्योन्यत्र, यज्ञ केवल विष्णु या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो जब ये ब्राह्मणों ने भोजन देना मना किया कृष्ण बलराम के लिए, तो कृष्ण ने कहा कि आप ब्राह्मणों के पास मत जाओ, आप क्या करो अभी, ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं उनके पास जाओ, उनके हृदय में मेरे लिए क्या है, प्रेम है, भक्ति है, सेवा करने की भावना है। इन 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 ब्राह्मणों का हृदय कठोर हो गया है मंत्रों का उच्चारण करते करते, इनके पास जाओ। और ये जो यज्ञ पत्नियां थी, ब्राह्मणों की पत्नियां थी, उन्होंने कृष्ण बलराम को कभी देखा नहीं था। उनका जो गांव है मथुरा और नंदगांव के बीच में था, उन्होंने केवल दूसरी जो गोपिकाएं हैं उनके द्वारा कृष्ण और बलराम का गुणगान को केवल सुना था, और उस श्रवण करने मात्र से ही यज्ञ पत्नियों का आकर्षण कृष्ण की सेवा के लिए बहुत प्रगाढ़ हो गया था। और फिर जब यज्ञ पत्नियों ने यज्ञ के लिए बहुत सारे भोजन बनाया था, व्यंजन बनाए थे, तो वो जब ये सारे बालक गए और उन्होंने कहा कि आप क्या करो, हमें ये अर्पित हमें दे दो कृष्ण और बलराम के लिए, तो ये तो बहुत खुश हो गई यज्ञ पत्नियां। घर में कुछ रखा ही नहीं उन्होंने, सारा भर भर के बड़े बड़े पात्र अपने सर में डाल के उन्होंने कहा आपके पास ही नहीं देंगे, हम खुद आएंगे चल के, हम कृष्ण को प्रदान करेंगे, कृष्ण और बलराम को। तो सारी यज्ञ पत्नियां वहां चारागाह में जाती हैं जहां कृष्ण और बलराम थे गवों के पास, और उनको सारा भोजन अर्पित करते हैं। और ये यज्ञ पत्नियां, बल्कि ब्राह्मण आदि मना कर रहे थे, कहां जा रही हो, कहां जा रही हो ये सब भोजन आदि लेकर, इन्होंने कहा कृष्ण बलराम से मिलने जा रही है। तो ये गए और इन्होंने अर्पित किया, और फिर उनकी इच्छा थी कि हे कृष्ण बलराम हम सदैव आपके निकट निवास करना चाहते हैं। तो जब ये कहा कि निकट निवास करना चाहते, तो उन हाँ, हमने तो अभी सारे हमारे संबंधों को त्याग दिया है, न भातृ बंधु सुहृदा कुत एव चान्या, ना हमारे भाई है, बंधु है, पति है, हाँ कोई नहीं है। हम तो चाहती हैं कि आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर सदैव आपके निकटतम निवास करें। तो कृष्ण ने कहा कि मेरे निकट रहना इतना लाभदायक नहीं है, इतना उन्नत नहीं है, और मेरे निकट रहने से अनुराग इतना अधिक मेरे प्रति बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि है यज्ञ पत्नियों, एक चीज करने से मेरे प्रति मेरे निकट रहने से भी अधिक अनुराग आप बढ़ा सकती हो। तो यज्ञ पत्नियों ने कहा कि क्या है वो चीज, तो भगवान कृष्ण कहते हैं श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयी भावानुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षे न प्रतेयात ततो ग्रहान। उन्होंने कहा ये चीज करने से, चार चीजें करने से मेरे प्रति आपका दृढ़ अनुराग हो जाएगा, जितना अनुराग मेरे नजदीक रहने से नहीं होगा। तो वास्तव में हमारे लिए बहुत अधिक शिक्षाप्रद है। तो कृष्ण कहते हैं श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्। सबसे पहले क्या है, श्रवणात्, जितना मेरे बारे में तुम सुनोगी उतना ही प्रगाढ़ अनुराग प्रीति मुझसे करने लगोगी। श्रवणात् दर्शनात्, और मेरे विग्रहों का दर्शन करना, हाँ विग्रह हैं या राधा कृष्ण आदि के, ध्यानात् मई भावानुकीर्तनात्, और मेरे नामों का क्या करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो इस प्रकार से कृष्ण उन यज्ञ पत्नियों को ये इंस्ट्रक्शंस देकर उनको वापस भेजा, और वो यज्ञ पत्नियां जब वापस अपने घर गई तो जो उनके ब्राह्मण पति थे वो अपने आपको धिक्कार करने लगे कि हमारा पुरुष शरीर होकर भी हम लज्जित है, हमारा व्यर्थ जीवन है, आपने स्त्रियों का शरीर धारण करके भी भगवान के प्रति इतना प्रेम अनुराग जागृत किया है, आप महान हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण भी अपने पत्नियों की प्रशंसा करने लगे, कितना प्रेम या भक्ति या सेवा की भावना कृष्ण के प्रति इनको है। तो ऐसे जब शाम हो गई तो भगवान कृष्ण वहीं निवास किए उस समय, और फिर दूसरे दिन वापस चले जाते कृष्ण नंद महाराज के वहां नंद ग्राम गवों को लेकर। तो भगवान कृष्ण रोज सुबह अपने संगियों के सखाओं के साथ आप देखते हैं निकलते थे, तो जैसे ही कृष्ण गोचारण करने के लिए गोवर्धन की ओर निकलते थे उसी समय सारे ब्रज की जो बालाएं हैं, ब्रजवासी हैं, अपने घरों से बाहर आते थे। किसको देखने के लिए आते थे, कृष्ण को देखने के लिए, क्योंकि कृष्ण को न देखना उनके लिए बहुत अधिक कष्टप्रद दिनचर्या थी। उनके आंखों से कृष्ण ओझल हो जाए इतने घंटों के लिए उनको सहन नहीं होता था, इसलिए वो सुबह सुबह कृष्ण और बलराम को देखने के लिए ये गोपिकाएं आती थी, और कृष्ण अपने सखाओं के संग में क्या करते थे, गवों को चराने के लिए गोवर्धन के ऊपर निकलते थे। बल्कि शास्त्र कहते हैं कि भगवान कृष्ण को सदैव आगे चलना होता था। जनरली हम गवों को चराने जाते तो गवों के पीछे हम रहते हैं, और गवे क्या होती है, आगे चलती है। ये नहीं कि भगवान कृष्ण के पास जो लाठी थी स्टिक वो गवों को मारने के लिए नहीं थी, वो किसके लिए थी, आसुरों के लिए। गवों के लिए भगवान के पास कुछ भी नहीं था, भगवान कृष्ण गवों को बांधने के लिए रोप का भी इस्तेमाल नहीं करते थे, उनके पास एक ही चीज था जिसके द्वारा सारे गवों को वो बांध देते थे, और वो क्या थी, उनकी बांसुरों की दिव्य ध्वनि, जिसके द्वारा किसी रोप को रस्सी की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, तो ऐसे कृष्ण, क्योंकि जब कृष्ण ने गवों को चराना शुरू किया, हाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ गोपाष्टमी, तो जब गवों को चराने के लिए भगवान निकल ही रहे थे तो देखा कि गवें चाह ही नहीं रही आगे, तो फिर सोचा कि क्यों नहीं ये चाह रही हैं। तो गवें सोच रहे थे कि हम यदि आगे आगे चलने लगेंगे और कृष्ण पीछे चलेंगे तो कृष्ण का दर्शन हम नित्य रूप से नहीं कर सकती, तो कृष्ण कहाँ चलने चाहिए? हमारे आगे। कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाही आन, इन नेत्रों का दूसरा कोई फल नहीं है, लाभ नहीं है। कृष्ण का यदि हम दर्शन नहीं कर पाते, कृष्ण को हम देखते नहीं है, तो इस प्रकार से गव्य भी कृष्ण का दर्शन करने में आनंद अनुभव करती है। तो कृष्ण नाना प्रकार की क्रीड़ाएं गोवर्धन पर अपने भक्तों के संग में करते हैं। हाँ देखो, गोवर्धन के ऊपर कृष्ण लेटे हुए हैं, हाँ वहां बलराम लेटे हुए हैं, और कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनकी सेवा में मग्न हैं। अलग अलग जो गोप सखाज है, इससे अधिक आनंददायी जीवन क्या है, इससे अधिक आनंददायी स्थान या वातावरण क्या हो सकता है, जहां जीव हमेशा का जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, वो अनुभव कर सकता है। तो गोवर्धन के एक शिखर पर कृष्ण बलराम लेटे हुए हैं, जहां बलराम कृष्ण से नाना प्रकार की चर्चाओं में मग्न है। तो इस प्रकार से कृष्ण अपने गोप सखाओं के संग में नाना प्रकार की लीलाएं गोवर्धन पर करते हैं, और एक दिन शाम कृष्ण क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं। एक दिन शाम को कृष्ण गवों को या बछड़ों को चराकर वापस आ गए। नंद महाराज और यशोदा माता उनको क्या कर रही है, रिसीव कर रहे हैं। तो कृष्ण जब वापस आए तो उन्होंने शाम को अपने जो पिता हैं नंद महाराज से बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा, कृष्ण ने, क्योंकि शाम हो रहा था, सनसेट हो रहा था, तो भगवान ने देखा कि बहुत बड़ा कुछ उत्सव की तैयारी हो रही है। तो ये क्या उत्सव है, नाना प्रकार का भोजन यज्ञ के लिए चीजें अरेंज की जा रही है। तो कृष्ण बचपन से ये देखते हुए आ रहे हैं, और अभी कृष्ण की आयु क्या थी, 7 साल 7 महीने, ये भगवान की आयु थी। तो भगवान की आयु थी, तो भगवान ने शाम को घर में आया और उनका नंद महाराज को वो कहते हैं, कथ्यताम में पिता को यम संभ्रमो व उपागता किम फलम कश्य उद्देश्य केन वा साध्यते मखा। कि हे पिताश्री, अभी मुझे ये बताइए, क्योंकि हमें मैं बड़ा हो गया हूं। हाँ, जैसे कोई बच्चा हम कहते तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बड़े हो जाओ तब समझो। अभी कृष्ण ने बचपन से 7 साल से देखते ही आ रहे हैं, कुछ तो कुछ साल में एक बार फेस्टिवल होता है, यज्ञ की तैयारी होती है, सारा साज सामान इकट्ठा किया जाता है। लेकिन आज कृष्ण ने कहा कि मैंने बहुत देखा 7 साल से, आप मुझे आज बताइए कि आज ये जो आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हो, किसके उद्देश्य के लिए है, किसकी पूजा के लिए है, कौन सा यज्ञ करने जा रहे हो। तो कई प्रकार के प्रश्न हाँ उन्होंने पूछा, और कृष्ण ने कहा, जो आप ये यज्ञ करने जा रहे हो, क्या ये शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है, या फिर आपका रीति रिवाज, हाँ पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आ रहा है उसी को ही कर रहे हो। तो नंद महाराज तो अचंभित हो गए, उन्होंने कहा, ये बच्चा उठपटांग प्रश्न नहीं पूछ रहा है। कई बार बच्चे उठपटांग प्रश्न पूछते, उन्होंने सोचा कि ये जो बच्चा है बहुत जानकारी रखता है, और ये विद्वत्तापूर्ण जो प्रश्न है ये मुझे पूछ रहा है। और कृष्ण ने कहा कि मैं तो इसका उत्तर अटेंटिवली सुनना चाहता हूं आपके द्वारा, और आप एक साधु के समान स्वभाव वाले हैं, क्योंकि साधु स्वभाव का जो व्यक्ति है वो कभी भी कोई चीज छुपा के नहीं रखता है, वो क्या करता है, हाँ बताता है। तो आप मुझे पराया, क्योंकि जो व्यक्ति है सर्वसामान्य व्यक्ति, वो देखता है मेरा पराया कौन है और मित्र कौन है, हाँ कौन शत्रु है और कौन मित्र है, तभी किसी चीज को रिवील करता है। लेकिन नंद महाराज को कृष्ण कहते हैं कि आप तो साधु के समान हैं, उनके स्वभाव वाले हैं, आप मुझसे कुछ छुपाइए नहीं, आप मुझे सब कुछ बता दीजिए। और कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को अंधे व्यक्ति की तरह अंधानुगमन नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज को प्रॉपरली जानना चाहिए, तभी कार्य करना चाहिए, तभी उसकी प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, आप मुझे बताइए ताकि मैं उसको समझ सकूं। तो जब नंद महाराज को यह प्रश्न पूछा तो नंद महाराज ने कहा, यह पॉपुलर ट्रेडिशन है, कोई शास्त्रों से इतना सम्मत नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी यज्ञ होते आ रहा था और हम भी अभी कर रहे हैं, जैसे घरों में होता है, दादा दादी कुछ पूजा अर्चना कर रहे होंगे, उसी को हम करते जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न पूछा जाए क्यों, तो उत्तर नहीं है। जैसे भारत में देखा जाता है घर में, हाँ, पूरा दीवार भरा रहता है 33 करोड़ देवताओं के फोटो का, और सुबह माँ पिता उठ के अगरबत्ती घुमाते रहते हैं, तो बच्चा गलती से एक दिन पूछ ले कि क्यों कर रहे हो इन सबको, एक एक से नहीं हो सकता क्या, तो ये कंफ्यूजन हो जाएंगे। माता पिता को एग्जैक्टली पता नहीं है एक से हो सकता है या 33 करोड़ की आवश्यकता है। तो वही चीज कृष्ण ने भी अपने फादर नंद महाराज को पूछा कि शास्त्रों में बोला गया है या रीति रिवाज को फॉलो करते आ रहे हैं, वो अंधानुगमन, न जानते हुए न समझते हुए आप मुझे क्लियरली एक्सप्लेन करो, क्लियरली बताओ। तो नंद महाराज ने कहा, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पया, कि ये जो यज्ञ है वो वृष्टि के जो देवता हैं, वर्षा के जो देवता हैं इंद्र, उनको उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रतिनिधित्व मेघ है, बादल आदि है, और वो क्या करते हैं, बारिश करते हैं, वो बारिश ही सारे जीवों को जीवन प्रदान करता है। उनकी प्रसन्नता के लिए हमें यज्ञ कर रहे हैं, बल्कि हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरे ब्रज में अलग अलग स्थानों में जितने भी नंद है, नव नंद होते हैं, कई प्रकार के वृष बानु हैं, वो सब इस यज्ञ को करने जा रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से नंद महाराज कृष्ण को ये चीजें बताते हैं, तो कृष्ण, हाँ, उनको नास्तिकता का दर्शन पढ़ाते हैं, जिसको कहते हैं कर्म मीमांसा। हाँ, जिसमें क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कर्म ना जायते जंतु कर्म नैव प्रलियते सुखम दुखम भयम क्षमम कर्म नैवाभिपद्यते, कि कर्म के द्वारा ही व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म के द्वारा ही सुख दुख प्राप्त करता है, कर्म के द्वारा ही वो अपना शरीर आदि त्यागता है। हाँ, कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, कर्म ही पूजा है। जनरली लोगों से बात करते तो गीता का एक ही श्लोक लोगों को वो भी आधा पता है, क्या है वो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है, हाँ, पलेषु कदाचन। तो इस प्रकार से भगवान ने भी कहा कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं, कोई भगवान आदि कोई है नहीं, कोई देवता वगैरह नहीं है। लेकिन नास्तिकवाद को भगवान प्रेजेंट कर रहे हैं यहां, पुनर्जन्म का विश्वास दिलाते हुए है कि पुनर्जन्म है, लेकिन कोई नियंता नहीं है इसके पीछे, कौन नहीं है, कोई नियंता नहीं है, कंट्रोलर नहीं है, कोई देवता या भगवान आदि नहीं है जो इस चीज को हैंडल करता है। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या किया, इस दर्शन के द्वारा देवताओं का और परम नियंता का जो महत्व है उसको कम कर दिया, और उन्होंने कहा कि जो नेचर है, प्रकृति है, वही सर्वोत्कृष्ट है, वही व्यक्ति को क्या करती है, कर्मों के आधार पर दंडित करती है या पुरस्कारित करती है। तो इस प्रकार से भगवान नंद महाराज को ये बताते हुए बता रहे थे इस कन्वर्सेशन में, उन दोनों की चर्चा हो रही है, बहुत लंबी चर्चा है। तो भगवान ने कहा कि इंद्र के पास कोई इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी जीव के भाग्य को बदल सकता है। उन्होंने कहा जो इंद्र है वो भी तो एक जीव है, वो खुद ही अपने कर्मों में फंसा हुआ है। यस्त्विंद्र गोप मथवेंद्र महस्व कर्म, कि इंद्र से लेकर इंद्र गोप नामक जो कीड़ा इस पृथ्वी में है, ये दोनों भी क्या है, अपने कर्म फल से बंधे हुए हैं। हाँ, ऐसे इंद्र के पास कोई अधिकार नहीं है दूसरे के भाग्य को निर्धारण करने का। तो इस प्रकार से भगवान उनको बोल रहे थे, और उन्होंने कहा कि कर्म ही हमारे असली दैवत है, कर्म की ही क्या करनी चाहिए हमें, हाँ, पूजा करनी चाहिए, अपनी ड्यूटीज को निभाना चाहिए, किसी और का आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान वास्तव में हम सबको ये सिखा रहे हैं इसके द्वारा कि व्यक्ति को किसी देवताओं का आश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, केवल परम भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उसके अलावा किसी और वस्तु का, किसी और व्यक्ति का आश्रय ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो व्यक्ति परम भगवान की शरण नहीं ग्रहण करता, उनका आश्रय नहीं ग्रहण करता, उनके अलावा किसी और की शरण ग्रहण करता है, तो उसको जार पत्नी के समान कहा गया है। कि एक पत्नी होती है, एक स्त्री होती है, वो खाती है, रहती है, अपना पालन पोषण अपने पति के धन आदि से करती है, लेकिन किसी और पति से क्या करती है, प्रेम के संबंध रखती है। तो भगवान ने कहा यदि व्यक्ति परम भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण करता, कृष्ण के अलावा किसी और का आश्रय ग्रहण करता है, तो वो उस जार पति की पत्नी के समान है, जार पत्नी के समान है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि हमें तो जानना चाहिए कि हमारे कर्तव्य क्या है। भगवान ने कहा वर्तेत ब्राह्मणा विप्रा राजन्यो रक्षया भो, कि जो ब्राह्मण है वो पूजा आदि के द्वारा अपना उदर निर्वाह करते हैं, अपनी जीविका का पालन करते हैं। राजन्यो रक्षया भो, जो क्षत्रिय है वो समाज का प्रशासन आदि करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और जो वैश्य है वो कैसे करते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्य, खेती करके, गवों का पालन करके, बैंकिंग करके वैश्य अपना उदर निर्वाह करता है, और जो शूद्र है वो बाकी तीन वर्णों की सेवा करके अपना उदर निर्वाह करता है। तो भगवान ने कहा कि एक जो वैश्य है, वैश्य के तो कई सारे कार्य हैं, तीन प्रकार के कार्य है, कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसिदम, चार प्रकार के कार्य है, कृषि करना, बिजनेस करना, गवों की रक्षा करना, और बैंकिंग, लोन देना, लोन लेना, ये वैश्य का बिजनेस है। तो भगवान ने कहा तो हम तो एक ही कार्य करते हैं, और हमारा कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या था कृष्ण का, गोपालन, गोपाल इसलिए उनको कहा जाता है। तो भगवान ने कहा कि हमें क्यों इस इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है देवताओं का आश्रय ग्रहण करने की, क्योंकि हम वैश्य हैं और हमारा उदर निर्वाह गवों के द्वारा होता है। तो यदि जो देवता गवों को प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करता है, उनका पालन पोषण करता है, उनकी ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जो पृथ्वी है, हाँ, वो किसका बर्थ प्लेस है, घास, पृथ्वी से क्या उत्पन्न होता है, घास, और उस घास से किसका पालन पोषण होता है, गवों का। तो भगवान ने कहा हमारे लिए तो पृथ्वी है, और पृथ्वी का ही एक रूप क्या है, गोवर्धन है। महेंद्रम किम करिष्यति, ये जो महेंद्र है, इंद्र है, ये क्या करेगा, इसकी क्यों हमें पूजा करनी चाहिए, यदि इसको बारिश करना है, बारिश ये करता है तो कहाँ बारिश करता है, सब जगह बारिश करता है जहां आवश्यकता भी नहीं है, समंदर के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर। हाँ, तो हम तो केवल, हम ना शहरों में रहते हैं, ना कस्बों में, ना बड़े बड़े टाउन्स में, हम तो जंगल के निवासी हैं। कृष्ण नंद महाराज को कहते हैं हम वनवासी हैं, हमें क्या करना चाहिए, दो चीजों का आश्रय लेना चाहिए। भगवान ने कहा एक है गौओं का, और दूसरा क्या है, ब्राह्मणों का। ये सारे देवता जिनको हम कभी देखते भी नहीं है, आज तक आपने इतने यज्ञ किए, कभी वो इंद्र आए थे क्या भोजन करने के लिए, भगवान ने कहा। तो नंद महाराज कहते नहीं, कृष्ण इतने चतुरता से बोलते जा रहे थे, कृष्ण एक्सपर्ट है वाक चातुर्य में, बोलने में कृष्ण को कोई हरा नहीं सकता। तो नंद महाराज कृष्ण के हर चीज को, सारे बड़े सीनियर ब्रजवासी इकट्ठा हुए थे, और नंद महाराज वृंदावन के किंग है, राजा है, तो उनको कृष्ण ये प्रीच कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, गवों का आश्रय लेना चाहिए, और दूसरा है ब्राह्मणों का, क्योंकि ये दोनों सदैव हमारे आंखों से दृष्टिगम्य है, देखते हैं, और इनकी सेवा में हमें लगना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, तस्मात् गवा ब्राह्मणा नाम आद्रे चार तामखा, ये इंद्रयाग संबारास तरयम साध्य तामखा। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना चाहिए, आपने जितना भी इंद्र पूजा के लिए साज सामान इकट्ठा किया है, उन सब चीजों को आप बड़े फेस्टिवल में परिवर्तित कर लो। इन सारे चीजों को तीन भागों में बांटो, और इन तीन भागों में आप क्या करो, तीनों की संतुष्टि करो। एक है, भगवान ने कहा कि आप क्या करो, एक भाग अग्नि के लिए, अग्नि के लिए यज्ञ की तैयारी करो, क्योंकि कोई देवता हमें दिखता नहीं, कम से कम एक देवता जरूर दिखता है, वो कौन है? अग्नि है। और ब्राह्मणों को आदेश दो कि यज्ञ में वो आहुति डाले अग्नि को, और दूसरा कौन है? ब्राह्मण है। हाँ, तो उनको नाना प्रकार की दक्षिणा आदि देकर उनको संतुष्ट करो। और तीसरे हैं गोवर्धन, जिनको आप संतुष्ट कर सकते हो अन्नकूट ऑफर करके। अन्नकूट मीन्स माउंटेन होता है, अन्न का क्या बनाओ? माउंटेन बनाओ, हिल बनाओ, पहाड़ बनाओ, और पहाड़ के पहाड़ गोवर्धन को अर्पित करते जाओ। भगवान ने कहा कि चीजें वही है, लेकिन आपको क्या करना है, किसकी सेवा में लगाना है? ब्राह्मण, गाय, और जो गोवर्धन है, इनकी सेवा में लगाओ, क्योंकि भगवान को ये दो चीजें सर्वाधिक प्रिय है। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, कि भगवान को ब्राह्मण और गाय सर्वाधिक प्रिय है। हम सुनते हैं जब भगवान को गोचारण करने के लिए भेजा गया था, यशोदा माता भेज रही थी, तो यशोदा माता ने कहा कि आपको निकलना है, अभी गवों को चराने के लिए जाओ। कृष्ण निकल ही रहे थे तो यशोदा माता ने उनके लिए एक अम्ब्रेला लाके दिया, एक छतरी छाता लाके दिया, और दूसरा क्या दिया? शूज लाके दिया। तो भगवान कृष्ण उसको दोनों चीजों को स्वीकार नहीं करते, उन्होंने कहा कि मुझे ये दो चीजें नहीं चाहिए। हे यशोदा, हे नंद महाराज, आपने सारे गवों के लिए भी क्या लाओ? एक एक अम्ब्रेला होना चाहिए, और उनके चार पांव में चार जूते होने चाहिए। तो नंद महाराज और यशोदा आश्चर्यचकित हुए, उन्होंने कहा हे कृष्ण, ये लाना हमारे लिए असंभव है। उनके लिए छतरी लावे दी गवों के लिए, पकड़ेगा कौन? 9 लाख गवे तो एक नंद महाराज की है, ऐसे 9 नंद है जिनके पास 9-9 लाख गवे है, तब अनलिमिटेड काउज है वृंदावन में, इसलिए गोलोक उसका नाम है। गोमिस गायों का लोक, जिसको गोलोक जब वो प्लैनेट है। तो इस प्रकार से कृष्ण का बहुत अधिक प्रेम ब्राह्मणों को और गवों के लिए है। तो फिर भगवान ने कहा पच्यन्ताम् विविधापा का सुपान्ता पाय साधया, आप क्या करो, नाना प्रकार के व्यंजन तैयार करो गोवर्धन की सेवा के लिए, और इस गोवर्धन पूजा को मनाओ। और गोवर्धन पूजा ये जो फेस्टिवल है उसका दूसरा नाम क्या है? अन्नकूट उत्सव। क्या नाम है? अन्नकूट उत्सव। तो फिर भगवान ने कहा कि जब आप ये गोवर्धन फेस्टिवल मनाओगे, अन्नकूट बनाओगे, तो चांडाल या कुत्ते से लेकर सबको प्रसाद वितरित करो, लेकिन ये इंद्र को मत देना। सारे ब्रजवासी ने जब ये सुना मौन हो गए, सारे ब्रजवासी, कुत्ते को भी दे दो, चंडाल को दे दो, लेकिन किसको मत दो? इंद्र को। तो ये जब ध्वनि सुनाई दी, किसको सुनाई दी? उनके कान भैरे हो गए, कान में इतना पेन होने लगा। और वैसे भी क्योंकि भगवान ने जब कहा था कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करो और उसमें क्या करो, स्वलंकृता भुक्तवंता सोनुलिप्ता सुवास सहा प्रदीक्षणाम च कुरुता गो विप्रानल पर्वतान, आप लोग जब ये ऑफरिंग करोगे नाना प्रकार के व्यंजन गोवर्धन को, तो आप सबको बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, फेस्टिवल मूड, नए नए वस्त्र धारण करो, आभूषण आदि से अपने आप को सजाओ, और सब लोग मिलकर परिक्रमा करो चार चीजों की, गवों की, ब्राह्मणों की, अग्नि की और गोवर्धन की। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा था कि जो भी गोवर्धन की नहीं चलना, चलने के लिए जिनको डिफिकल्टी है, भगवान ने कहा कि आप बैलगाड़ी में बैठो, लेकिन क्या करो? गिरिराज की परिक्रमा करो। तो इस प्रकार से इस फेस्टिवल से पहले ही कृष्ण ने कहा था कि ये मेरा मत है। इस प्रकार से हे नंद महाराज, हे ब्रजवासीगण, आप इस उत्सव का अरेंजमेंट करो, और इनकी जो कोई पूजा करता है, गिरिराज की सेवा करता है, उसके जीवन में मंगल सुख आदि आता है। हाँ, बहुत सारी चीजें भगवान ने बोली। और कोई व्यक्ति यदि गोवर्धन का तिरस्कार करता है, गोवर्धन की सेवा में नहीं लगना लगता, गोवर्धन से दूर भागता है, उस व्यक्ति के जीवन में क्लेश ही क्लेश आने लगेंगे, और वो कैसे होंगे? अशेष, जिनका कभी शेष नहीं होने वाला। भगवान ने कहा ऐसे व्यक्ति जरूर अंधे हो जाएंगे, जल्दी बुढ़ापा उनको ग्रसित करेगा, बुढ़ापे के बहुत अधिक कष्ट भुगतने पड़ेंगे, जो गोवर्धन की सेवा में अपने आप को नहीं लगाएगा, तो सारे ब्रजवासी हाँ तैयार हो जाते हैं इस फेस्टिवल को अरेंज करने के लिए। तो जब दीपावली होता है, अमावस्या है, हाँ उस दिन भगवान ने यह प्रवचन दिया था। किसको दिया था? नंद महाराज को। तो अमावस्या के दिन दीपावली मनाया गया, तो दूसरे दिन प्रतिपदा आता है। तो प्रतिपदा के दिन ये फेस्टिवल मनाया, सारी जो दिव्य अरेंजमेंट है वो सारा साथ सामान लाया ब्रजवासियों ने, पूरा गोवर्धन के चारों ओर बैनर्स लगाए फेस्टिवल्स के, हाँ कि अभी ये बड़ा उत्सव होने जा रहा है, और नाना प्रकार के सुगंधित जल इत्र आदि लाए गोवर्धन की पूजा करने के लिए। और श्रीमद् भागवतम और कई ग्रंथ कहते हैं कि उन्होंने इतने बड़े बड़े जलाशय क्रिएट किए सरोवर के समान, जिसमें घी घी हाँ कलरफुल जो वेजिटेबल्स है, सब्जियां हैं, उनके अनेकों प्रकार के सूप, और बहुत बड़े बड़े सरोवर थे दूध के, दही के, मक्खन के, कई प्रकार के केक्स ऑफर किए गए, हाँ बड़े बड़े माउंटेन्स थे, मतलब इतना प्रकार का नाना प्रकार के व्यंजन बहुत बड़ी मात्रा में गोवर्धन को अर्पित किए जा रहे थे। और सब जगह जोर जोर से नगाड़े और कई प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे, तो इनका जो ध्वनि है इंद्र के कानों में जाके बहुत जोर जोर से गूंजने लगता है, जैसे मैंने कहा कि उनके कानों में पेन होने लगा। तो जो स्वर्ग के डॉक्टर्स हैं, उनका नाम क्या है? अश्विनी कुमार, उनको डॉक्टर, वो डॉक्टर्स है स्वर्ग में, अश्विनी कुमार बहुत पावरफुल डॉक्टर्स है। तो उन्होंने सोचा, अरे राजा इंद्र को तो उन्होंने डायग्नोज किया क्या कि एक गांव है पृथ्वी में जिसका नाम ब्रज है, उस गांव में जो ध्वनि हो रहा है ना उसके कारण आपके कानों में पेन शुरू हुआ है। इंद्र कहते सही पहचान लिया आपने। हाँ अभी इंद्र को इतना टेंशन लेने की क्या आवश्यकता थी, हजारों गांव उनके पूजा कर रहे थे, एक गांव ने पूजा नहीं किया, कुछ लोगों ने, तो उसको शांत रहना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे वो कहते ना आ बैल मुझे मार, इंद्र जानबूझ के अपना जो जीवन है खतरे में डाल रहे थे। और भगवान ने केवल ये लीला किए थे शक्र दर्प जिघांसया, कि जो इंद्र है उसके अहंकार को टुकड़े टुकड़े चकनाचूर करने के लिए। क्योंकि व्यक्ति जब अपने पास धन सौंदर्य ज्ञान आदि से बहुत अधिक घमंडित हो जाता है, तो कृष्ण क्या करते हैं, पद आदि से गर्वित हो जाता है, तो कृष्ण सहन नहीं करते और अंधा हो जाता है व्यक्ति, मदांध जिसे कहते हैं। बल्कि इंद्र का पद कृष्ण ने उसको दिया है, लेकिन इंद्र क्या कर रहा है, अभी भगवान को ही भूल गया है, और भूलने के कारण भगवान उनके जो घमंड है उसको चकनाचूर करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण बताते हैं, प्रभुपाद कहा करते थे कि एक बार एक साधु तपस्या कर रहा था, उस समय एक जो चूहा है वह घूम रहा था, चूहा घूमते घूमते इधर उधर घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक बिल्ली उसके पीछे लगी है। तो चूहे को लगा बिल्ली से अपनी रक्षा करनी है तो मुझे क्या करना होगा, साधु के पास जाना होगा, साधु तपस्वी है, उसके पास योग शक्ति आदि है। उन्होंने कहा साधु महाराज आप मुझे क्या करो, बहुत आजकल कष्ट आ रहे जीवन में, ये बिल्ली को कुछ काम नहीं, उठ सुट मेरे पीछे भागती रहती है, मैं अपना जीवन कैसे तो हथेली में लेके घूम रहा हूं, तो आप क्या करो मुझे ना बिल्ली बना दो, हम ही मंदिर में जाते, भगवान मेरा बॉस तंग करता है, अगला प्रमोशन मेरा हो जाए बॉस की जगह पर, हाँ मुझे बॉस बना दो। तो ये बिल्ली ने चूहे ने भी उन्होंने अपना जल कमंडलों से जल लिया और छिड़काया, कहा तदास्तु, और ये तो बिल्ली बन गया, लंबी पूछ मूछे भी थी उसकी बिल्ली की, घूम रहा था बिल्ली इधर उधर, घूमते घूमते थोड़ा सा बाहर गया घर से, दूर दूर देखा कि कुत्ता जोर जोर से चिल्लाते हुए भौंकते हुए उनके पीछे भाग रहा है। अभी बिल्ली दौड़ के फिर कहाँ जाएगा, बिल्ली साधु के पास ही भाग गई और वहां गई और उनका साधु महाराज आप मुझे क्या करो, कुत्ता बना दो। हमारे जीवन में यही चलता रहता है, मृत्यु आने तक इसी चक्कर में रहते, थोड़ा सा और ऊपर उठो, और बड़ा बन जाओ, और बड़ा बन जाओ, लेकिन प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो लेकिन जब ये गया और उन्होंने कहा कि मुझे आप कुत्ता बना दो, तो वो कुत्ता उन्होंने फिर से अपना टेक्निक यूज किया उनको तो जल से पानी तो छिड़कना है, मंत्र को उच्चारण करना है, उनको कुछ और कुछ करना तो है नहीं। उन्होंने कहा तथास्तु हो, तो फिर वो बिल्ली बन गए, बिल्ली से अभी कुत्ता बन गए। कुत्ता अपनी पूंछ ऊपर उठा के घूम रहा था, अपने मोहल्ले का राजा होता है ना कुत्ता, हर मोहल्ले अपना अपना एरिया होता है, इसलिए दूसरा कुत्ता आ जाए भौंकने लगते हैं जोर जोर से, मेरे एरिया में क्यों आए हो। वैसे ही है मेरा भारत, मेरा राज्य, मेरा फरीदाबाद, है कि नहीं। तो वैसे ही कुत्ते की हालत थी, कुत्ता थोड़ा सा अपने एरिया से बाहर गया, शेर दिखाई दिया, शेर ने उसका पीछा किया। तब ये दौड़ते हुए साधु के पास आया कि अच्छा और भी मुझे ऊपर आगे बढ़ना है। हाँ, उन्होंने कहा मुझे आप क्या बना दो, शेर बना दो। तो उन्होंने साधु ने कहा चलो शेर बन जाओ। शेर बना, शेर बनते ही बड़ी बड़ी आवाज निकालने लगा और साधु के ऊपर ही, हाँ जिसने क्या बनाया था उसको, और साधु कोई पहला खाने के चक्कर में था। ये इंद्र का ऐसा सिचुएशन है, कृष्ण ने ही उनको इंद्र पद दिया है और अभी इतना मदांध हो गया है, अभी क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि कृष्णा आपको अभी पाठ पढ़ाता हूं। तो फिर साधु ने कहा अच्छा बेटा, मैंने ही तुम्हें शेर बनाया और मुझे ही खाने निकले हो। तो उन्होंने पुनः जल लिया और कहा पुनः मुश्क बवा, फिर से चूहे बन जाओ। तो फिर से वो चूहे बन गए। तो वैसे इंद्र की स्थिति, हम सब की स्थिति वैसे ही है, जैसे ही भौतिक अहंकार बढ़ने लगता है तो तुरंत भगवान उस अहंकार को चकनाचूर करते हैं। तो फिर जब ये सारी चीजें ऑफर की गई, बहुत नाना प्रकार के व्यंजन उनको ऑफर किए गए, तो वही कृष्ण जो छोटे बालक के रूप में ब्रजवासियों के साथ थे, वही अभी बहुत विशाल रूप उन्होंने धारण किया। और वो विशाल रूप कैसे उन्होंने प्रकट किया, इनको ये देने के लिए, सांत्वना देने के लिए कि देखो आप इतने सालों से इंद्र की पूजा करते हो, कभी ये इंद्र भोजन करने के लिए आया नहीं, और अभी देखो गोवर्धन की इस साल से पूजा शुरू कर दी आपने, गोवर्धन अभी प्रकट हुए, कृष्ण ही प्रकट हो गए वहां। बहुत विशाल रूप, बहुत बड़ा रूप उन्होंने धारण किया और उन्होंने खाना शुरू किया। कवि कर्णपुर या जीव गोस्वामी अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि सारे जो ब्रजवासी तो इतने छोटे छोटे चींटी की भांति थे, उन्होंने देखा कि गोवर्धन कृष्ण के समान ही उनका रूप है, दैदीप्यमान और बहुत अधिक प्रकाशमान था। उनको लगा कि ये जो छोटा कृष्ण है, इन्होंने अपना विस्तार किया है, जिन्होंने पूतना का वध किया था, तो ये कृष्ण ही लग रहे हैं। तो कृष्ण ही प्रकट हुए थे गिरिराज के रूप में। और फिर क्या किया कृष्ण ने, कृष्ण जो ब्रह्मा से भी अधिक बुद्धिमान है, कृष्ण ने स्वयं उनको पूछा, दूसरे रूप अपने रूप को पूछा गोवर्धन के रूप में। उन्होंने कहा कि आप बताओ आप कौन हो। तो वो जो रूप प्रकट हुआ था, उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं, गोवर्धन हूं, आप सबके ऑफरिंग्स को, आप सबके जो भोगाज है, अन्नकूट जो आपने अर्पित कर रहे हो, उस चीज को मैं स्वीकार करने के लिए प्रकट हो गया हूं। तो ये देखकर कृष्ण और बलराम आपस में हंसते पहले, और दूसरों को शिक्षा देने के लिए दोनों दंडवत प्रणाम करते हैं, सारे ब्रजवासी दंडवत प्रणाम करने लगते हैं गिरिराज को देखकर। तो वो साक्षात कृष्ण है, तो सारे ब्रजवासी हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते हैं। और फिर भगवान गोवर्धन के रूप में कहते हैं कि मैं बाकी सारे विग्रहों के समान नहीं हूं, डेटीज के समान नहीं हूं। हाँ, बाकी आप सबकी पूजा करते हो, कभी आके खाते हुए देखा है क्या आपने। उन्होंने कहा नहीं ब्रजवासी ने कहा अभी तक तो नहीं देखा। उन्होंने कहा अभी देखो मैं कैसे खाता हूं। तो भगवान के इतने गिरिराज के फॉर्म में इतने बड़े बड़े विशाल हाथ थे। उन्होंने वर्णन आता है कि 70 मिलियन पाउंड राइस एक साथ खा लिया, कितने सारे पाउंड्स थे, और भात के बड़े बड़े पहाड़ थे, और बहुत सरलता से वो दूध का पान कर रहे थे, दही आदि खा रहे थे। तो ये ब्रजवासी, उन्होंने जब हाथ आगे बढ़ाया तो सारे ब्रजवासी भागते थे उस स्थान में कि अभी क्या खाने वाले हैं। जैसे चातक पक्षी हमेशा आकाश के जल के लिए चाह करता है, देखता ही रहता है, तो उसी प्रकार से ब्रजवासी भागते थे कि अभी क्या खाने वाले, नेक्स्ट क्या है, अगला क्या है। तो इस प्रकार से गोवर्धन ने हर चीज को खा लिया और ब्रजवासी ऐसे देखते रहते थे कि जैसे कोई पेंटिंग किया हो चित्र, सारे ब्रजवासी एक ही मुद्रा में खड़े रह जाते थे। तो इस प्रकार से गोवर्धन के रूप में हाँ भगवान ने इन सारी चीजों को स्वीकार किया और फिर उनके दांतों में जो भोजन वगैरह अटक गया था उनको निकालने के लिए गोवर्धन ने अपने ऊपर जो पेड़ थे बड़े बड़े उनको तोड़ा, उसमें से वो सारा अटका हुआ अन्न निकाल दिया। फिर उनको जल डालना था, खाने के बाद हम क्या करते हैं, पानी डाल के गुलना करते हैं, तो वो भी उन्होंने किया। एक एक जलाशय को ही उठाया, एक कुंड को ही उठा लिया, पूरा पी लिया। जीव गोस्वामी वर्णन करते गोपाल चंपू ग्रंथ में। और फिर इस प्रकार से उन्होंने सारे व्यंजनों को स्वीकार करते हैं तो कृष्ण फिर गवों की पूजा करते हैं सारे ब्रजवासियों के साथ, अग्नि की पूजा आदि करते हैं और फिर सबके साथ भगवान कृष्ण हाँ गोवर्धन हाँ परिक्रमा करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए सर्वप्रथम परिक्रमा किसने की थी, कृष्ण ने ही की थी। अपने ही आचरण से उन्होंने ये हमें शिक्षा प्रदान की है परिक्रमा की। और फिर किस प्रकार से उन्होंने परिक्रमा की, भगवान कृष्ण ने क्या किया, जो सफेद वर्ण वाली गायें हैं उनको सबसे आगे रखा, फिर उसके बाद जो दूसरी गायें हैं उनको उनके पीछे रखा, फिर उनके बाद जो ब्राह्मण हैं वो निकलने लगे, फिर ब्रज के जो लीडर्स थे मुखिया थे वो परिक्रमा उनके बाद करने लगे, फिर उन मुखियों के असिस्टेंट और उनकी सारी पत्नियां उनके सारी सेविकाएं और जितने गाने बजाने वाले लोग हैं वो सारे परिक्रमा करने लगे। इस प्रकार से उस प्रतिपदा के दिन उन सबने वो परिक्रमा किया दीपावली के दूसरे दिन। और फिर रात को जहां ये अन्नकूट सेरेमनी उत्सव हुआ था वहां सबने निवास किया। और दूसरा जब दिन निकल आया तो उस समय हाँ ये सारे लोग और ये परिक्रमा करते करते जो गोपियां हैं वो गीत गाने लगी। क्या गीत गाती थी गोपियां, एक दूसरे को देखकर गोपियां कहती थी गिरि पूजयम विहिता के न अर्चे शक्र पदम अभयम जे न, कि ये गिरि राज की पूजा क्यों हमसे किसने करवाई। तो दूसरी गोपी कहती है कि जो इंद्र का गर्व दूर करने वाले हैं ऐसे कृष्ण ने हमें गिरिराज की पूजा सिखाई है। तो इस प्रकार से कई लीलाओं का वर्णन करते हुए गिरिराज की परिक्रमा इन सारे ब्रजवासियों ने की। और कृष्ण गिरिराज की परिक्रमा कई किस प्रकार से करते थे, अपने हाथ में एक डंडा लेकर हमेशा ऊपर उड़ाते थे और दौड़ते हुए उसे पकड़ते थे फिर आगे बढ़ते थे। तो इस प्रकार कृष्ण सारे ब्रजवासियों के संग में गोवर्धन परिक्रमा करते हैं हाँ प्रतिपदा के दिन। और उस रात को वहां गोवर्धन के तलाटी में निवास करते हैं और दूसरे दिन द्वितीया आती है जिसको क्या कहते हैं, भाई द्विज कहते हैं। तो भगवान कृष्ण उस दिन विशेष रूप से यम भाई द्विज क्यों है, क्योंकि यमराज और उनकी जो बहन है यम और यमी, यमी मीन्स कौन, यमुना, तो इन दोनों के दिव्य कार्यकलापों को सारे ब्रजवासी सुनते हैं और ये सारे लोग यमुना में जाकर विश्राम घाट में स्नान करते हैं। स्नान करके क्योंकि उस दिन भगवान द्वारका में भी जब थे तो उन्होंने नरकासुर का वध करने के बाद सुभद्रा के घर गए थे। शास्त्र कहते हैं कि भाई द्विज के दिन भाई को जाना चाहिए क्योंकि यमुना ने क्या किया था, विशेष वर मांगा था कि कोई उस दिन वृंदावन में आकर विश्राम घाट मथुरा में यमुना स्नान करता है उस व्यक्ति को फिर से यमराज का दरवाजा देखना नहीं पड़ता। ये विशेष वचन यमराज से यमुना ने लिया है। हाँ तो इस प्रकार से फिर कृष्ण के तो वृंदावन में कोई अपनी सगी बहन नहीं थी, हाँ उनके जो ताऊ थे उपनंद उनकी पुत्री थी जिसका नाम था सुनंदा। तो भगवान कृष्ण अपने सखाओं को लेकर उनके घर जाते हैं, उनका आमंत्रण था तो उन्होंने कृष्ण के लिए सुनंदा ने बहुत प्रकार के व्यंजन बनाए थे और उन व्यंजनों को जब वो अर्पित करने लगी भगवान को देने लगी तो कृष्ण खाने वाले थे तो भगवान के जो सखा थे मधुमंगल, मधुमंगल को एक चीज अच्छी लगती है वो क्या है, छल्ले बल्ले लड्डू खाए श्री मधुमंगल। भगवान के कई सखा हैं श्रीदामा सुदामा तो उसमें जो मधुमंगल है वो भगवान के बहुत क्लोज है, तो उनको लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो भैया द्विज है ये रोज क्यों नहीं होती, रोज होती तुम्हारे तो 360 बहने होनी चाहिए। वो भगवान को कहते हैं ताकि रोज हमें क्या मिलता, ये सब चीजें खाने के लिए मिल जाती। तो जब ये सब हुआ था तो द्वितीया के दिन इंद्र बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं और उनको बहुत अधिक मानसिक संताप बढ़ने लगता है। और फिर इंद्र चिल्लाने लगते हैं क्रोध में आकर, वो कहते हैं अहो आश्चर्य, देखो ये छोटे से बच्चे की बातों में आकर ये जो ब्रजवासी हैं जो पशुओं का पालन कर रहे हैं उनकी बुद्धि पशुओं के समान है, उन्होंने मेरी पूजा का तिरस्कार किया है, ये मूर्ख लोग है ब्रजवासी वृंदावन के निवासी, मेरी उपासना छोड़कर अपासना करने लगे हैं, ये लोग मदांध हो गए हैं, इन गोपों को किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। मैं देखता हूं ये छोटे से बच्चे कृष्ण के वाणी में इन्होंने इनको भड़काया है, देखता हूं ये छोटा बच्चा कैसे इनकी रक्षा करता है। हाँ, ये जो छोटा कृष्ण है चंचल बुद्धि वाला है और कैसे तुम्हारा हित करेगा। तो अभी ये इंद्र को इतना क्रोध आ गया था, क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने क्या किया, कई प्रकार के बादलों को भेजा, नाना प्रकार के बादलों को, संवर्तक बादल। जब इस सृष्टि का संहार करना होता है उस समय संवर्तक बादलों को भेजा जाता है, उन बादलों को इन्होंने भेजा और घनघोर वर्षा की वृंदावन में और कहा कि इस ब्रज का विनाश कर दो, एक ही कुछ ही क्षणों में डिस्ट्रॉय कर दो। तो इंद्र ने कई सारे मेघों को भेजने के बाद सारे मेघ आते हैं और कुछ ही क्षणों में ब्रज के ऊपर घनघोर वर्षा और तूफान धूल चारों ओर फैलने लगती हैं। और ये सारी चीजें केवल 48 मिनट में हुई, सारा वृंदावन नष्ट होने वाला था। तो उस समय जैसे कि शास्त्र कहते कि कितने बड़े बड़े बूंद थे, अभी तो हम पानी के ड्रॉप्स इतने छोटे छोटे देखते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े पिलर हाथी के समान बड़े बड़े ड्रॉप्स जो बूंदे हैं वो ब्रज में गिरने लगी। और जिस प्रकार से जो वट वृक्ष है, वट वृक्ष का दाढ़ी होता है पता है कि नहीं, उसके जो जड़े हैं उसके भांति कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा था पानी का। तो सारे ब्रजवासी भयभीत हो गए और सारे जो गव्वे हैं अपने बछड़ों को लेकर, गवों के गले में एक कंबल होता है लंबा सा लटकता है ना, उसको ऐसे ढक के अपने बछड़ों को वो लेके ऐसे बैठी है और किसका स्मरण कर रही है, अपना मुख ऊपर करके कृष्ण का, कि कृष्ण ही एकमेव हमारे आश्रय स्थान है। तो इस प्रकार से जो बैल आदि हैं सब लोग कृष्ण का इंतजार में थे। तो सारे जो ब्रजवासियों ने देखा इतने विशाल जलधारा बह रही है और प्रलय के समान बारिश हो रही है, तो सबने कहा कि हे कृष्णा, आपने पहले हमें दावानल पूतना आदि राक्षसिनियों से हमें बचाया था, आप क्या करो, हमारी रक्षा करो। देखो ये जो बिजलियां हैं सांप की जिह्वा के भांति अपनी हमारी ओर आ रही है और हम अभी क्या कर रहे हैं, सारे ब्रज के निवासी रो रहे हैं, हेल्पलेस हैं, तो आप आपकी शरण ग्रहण करते हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। तो उसी समय कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण अपनी आंखों को खोलते हैं। कहां तक खोलते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि कृष्ण अपनी आंखें इतनी लंबी करते कि कानों तक आ जाए, इसलिए उनको कमल नयन कहा जाता है। आंखें जब कानों तक लंबी होती हैं तो कमल नयन के भांति वो सौंदर्यवान प्रतीत होती हैं। तो भगवान ने अपनी आंखें खोली और कृष्ण का एक नाम मधु मधुसूदन है, जो मधु से भी अधिक स्वीट है बोलने में कृष्ण, वो बोलने लगे और उन्होंने कहा ओ ब्रजवासी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने गीता में क्या कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों का परित्याग करके कोई व्यक्ति एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करता है, हे अर्जुन, मैं उसको सारे उसकी सारे पापों से रक्षा करता हूं। और वो कहते उसको वचन देता हूं कि डरो मत। तो भगवान ने उनको कहा आप डरिए नहीं। कृष्ण ने सोचा भगवान तो भगवान अपने इच्छा शक्ति से इस सब चीजों को खत्म कर सकते थे, लेकिन भगवान एक नई दिव्य लीला प्रकट करने वाले थे अपने ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये पीड़ा इतनी बड़ी पीड़ा नहीं है, इतना बड़ा दुख नहीं है। जिस प्रकार से व्यक्ति को भूख लगती है और वो इतना बड़ा दुख नहीं होता, उसके बाद ही इंद्र के द्वारा क्रिएट किया हुआ जो दुख है वो छोटा ही है, इतना बड़ा दुख नहीं है। तो फिर कृष्ण हाँ क्या करते हैं, तुरंत ही ब्रजवासियों के आंखों के सामने निकल पड़ते हैं, हाँ, और तुरंत गोवर्धन का आश्रय ग्रहण करते हैं और गोवर्धन को अपने बाएं हाथ का जो हाँ छोटी उंगली है उसके नाखून के ऊपर क्या करते हैं, सरलता से धारण करते हैं। गिरिराज गोवर्धन के, गिरिराज धरण के। तो इस प्रकार से कृष्ण गिरिराज को धारण करते हैं और सारे ब्रजवासी, आचार्यगण कहते हैं कि जिस प्रकार से हाथी किसी कमल वृक्ष को धारण करता है उसी प्रकार से हाँ भगवान ने उनको धारण किया और इतना ऊंचा वो गोवर्धन उठ गया कि बादलों से भी ऊपर उसकी ऊंचाई चली गई। बाकी सारे जो कैलाश माउंटेन है, सुमेरु आदि है, वो सोच रहे थे ये इतना बड़ा कौन आ रहा है ऊपर, सब देख रहे थे। तो सबको पता चला ये कौन है, गिरिराज है, कृष्ण के हाँ तलहटी पर, कृष्ण के हाँ हाथ पर खड़ा है। तो सारे पहले तो ब्रजवासी डर रहे थे, उनको लगा कि ये छोटा सा बालक है, इसके हाथ से गिर ना जाए, सही में ठीक से उठाया कि नहीं उठाया, हाँ हम जाए कि ना जाए। तो कृष्ण ने क्या किया, कहा कि हे माता यशोदा, हे नंद महाराज, सारे अपने मित्रों को, सखाओं को, गोपियों को बोला और कहा कि संदेह मत करो, संशय संदेह मत रखो, ये मेरे हाथ से गिरने वाला नहीं है। हाँ क्योंकि ये जो गिरिराज है इसने आप सबसे पर्सनली पूजा स्वीकार की है और ये अपने आप ही आकाश में स्थित हो गया है और मेरे हाथ में तो ये उस प्रकार से स्थित है जिस प्रकार से जो कॉटन, कॉटन को क्या कहते हैं, रुई, रुई जिस प्रकार से ऊपर तैरती है हवा में, उसी प्रकार से ये जो गिरिराज है मेरे हवा मेरे हाथ के ऊपर तैर रहा है। हाँ बहुत हल्का है, मैंने इसको उठाने में कोई मुझे कष्ट आदि महसूस नहीं हुआ है। तो आप क्या करो, सारे गवों को, सारे ब्रजवासियों को, गोपियों को, सबको लेके इसके अंडर आ जाओ, नीचे आ जाओ। और गोवर्धन के नीचे बहुत गहरा एक स्थान था, स्वर्ग के बाती सुंदर रेतीला और अलग अलग प्रकार के हीरे माणिक आदि थे जिनके द्वारा सारा वातावरण प्रकाशमय हो रहा था। आचार्यगण कहते कि ये जो इंद्र की वर्षा है जब हो रही थी तो कोई ब्रजवासी आदि भीग नहीं गए थे, तुरंत ही उनके गोवर्धन के नीचे इन सब ने आश्रय स्वीकार किया था। और ये सारे जब आए और कृष्ण ने गोवर्धन को जब उठाया था तो अलग अलग प्रकार से ये बैठते हैं। सबसे बाहर का जो सर्कल था वो गवों का था, फिर उसके बाद ब्राह्मण बैठे थे, फिर उसके बाद सारे सीनियर गोप बैठे थे, फिर कई स्त्रियां बैठी थी जिनको पुत्र है, फिर उनके बाद श्रीमती राधिका और सारी गोपिकाएं बैठी थी, उनके बाद सारे गोप सखा थे, उनके बाद भगवान के प्रिय जो सखा है कुसुमासव, श्रीदाम, मधुमंगल और बलराम, नंद महाराज और रोहिणी और यशोदा, और फिर कौन थे, कृष्ण हाँ ऊपर गिरिराज को धारण करते हुए वहां खड़े थे। तो जब ये खड़े हुए थे कृष्ण, तो कृष्ण ने सबके ओर दृष्टिपात किया, हर एक व्यक्ति डरा हुआ था। कृष्ण ने जितने भी सीनियर लोग थे उनकी ओर आंखें डाली और उन आंखों के दृष्टिपात से उन्होंने सबके रिस्पेक्ट या प्रणाम अपना अर्पित किया, अलग अलग भक्तों को उन्होंने एंकरेज किया। और फिर ये जब हो रहा था तो उनका जो सखा है भगवान का मधुमंगल, क्योंकि ये ऐसा वातावरण तैयार हुआ था कि जहां एक ही साथ हर जो भगवान के भक्त हैं, हर भाव में जो भगवान के भक्त हैं, वो एक साथ क्या कर पा रहे थे, कृष्ण को देख पा रहे थे। और कैसे देख रहे थे, अपने जो आए हैं वो ब्लिंक किए बिना, पलक को झपकने बिना, वो क्या कर रहे थे, निरंतर बिना किसी रुकावट के कृष्ण के सौंदर्य को देखते जा रहे थे, कृष्ण के सौंदर्य का हाँ पान करते जा रहे थे। तो इस प्रकार वो जो मधुमंगल ब्राह्मण है उन्होंने कहा कि कृष्ण तुम तो थक गए हो, देखो मैं ब्राह्मण हूं और मेरे पास ब्रह्म तेज है, ब्रह्म वर्चस्व भी हो और मेरे पास जो डंडा है बहुत शक्तिशाली है, तुम यदि आज्ञा देते हो तो मैं अकेला अपने डंडे से क्या कर लूंगा, गिरिराज को उठा के रख देता हूं, हाँ धारण कर लूंगा, तुम ना थोड़ा क्षण भर के लिए विश्राम कर लो। तो भगवान यशोदा माता कहते बेटा ये सही कह रहा है, हाँ माँ को इतना, बेटा हट्टा कट्टा हो तो भी माँ को कैसे दिखता है, बहुत पतला हो गया, दुबला पतला, हाँ ऐसी स्थिति है, प्रेम इतना प्रगाढ़ प्रेम है। इसलिए कहते हैं कि इस भौतिक जगत में लव है नहीं, सब क्या है, प्रेम नहीं है, काम है, लेकिन इस जगत में प्रेम का कोई थोड़ा सा लवलेश हमें प्राप्त होता है तो वो केवल माँ और पुत्र के बीच में जो सेवा का आदान प्रदान है उसी में थोड़ा सा हमें झलक मिलता है भगवान के प्रति प्रेम का। इस प्रकार से यशोदा माता ने कहा कि तुमने तो इन सारे सखाओं के संग में बहुत सारे कार्यकलाप किए हैं, देखो कृष्ण देवताओं से तिरस्कार करने का ये फल है, यदि तुम इंद्र से तिरस्कार नहीं करते तो तुम्हें इतना कष्ट उठाना नहीं पड़ता, हाँ तो तुम क्या करो। फिर यशोदा माता ने, भगवान ने अपना हाथ ऐसे रखा तो उनके हाथ को छूती है, मसाज करती है और कहते कि देखो तुम्हारा जो हाथ है बिल्कुल नया नया जो मक्खन निकलता है उसके समान इतना कोमल है, कुछ बल नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझ पाती कि तुमने कैसे इतने बड़े पहाड़ को, गोवर्धन को धारण किया हुआ है। हाँ मैं याचना करती हूँ, गिरिराज को प्रार्थना करने लगी यशोदा माता कि आप क्या हो जाओ, हल्के हो जाओ ताकि मेरा जो पुत्र है हाँ उनको कष्ट ना हो। तो इस प्रकार से यशोदा माता, फिर मधुमंगल कहता है कि हे माता तुम इस प्रकार से मत कहो, इंद्र ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत बड़ा उपकार किया है, और वो उपकार क्या है कि हम सब कृष्ण के सौंदर्य को एक साथ हाँ ब्रजवासी सारे क्या कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अपने आंखों के द्वारा एक साथ निरंतर, हाँ तो उन्होंने कहा समस्त ब्रजवासी जीव मात्र का सम्मेलन महोत्सव है, ये वास्तव में महोत्सव है, नेत्रोत्सव इसको क्या कहते हैं, नेत्रोत्सव, अलग अलग उत्सव होते, जीवा उत्सव, जीव के लिए उत्सव क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से यशोदा माता ने देखा कि इसको तो पसीना आ रहा है, इसका गला सूख रहा है, हाथ पैर थक गए हैं, तो कृष्ण ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये आकाश में आपने आप ठहरा हुआ है, मैं तो एक निमित्त मात्र इस गोवर्धन को मैंने धारण किया है। तो नंद महाराज कहते कि ये मधुमंगल ना अच्छा है, ये इंस्पायर करता रहता है कृष्ण को, प्रोत्साहित करता है, और तुम इसको क्या कर रहे हो, हतोत्साहित कर रहे हो कि मत उठाओ छोड़ दो थक गए हो। तो फिर सारे जो ब्रजवासी हैं वो सारे आनंद में कृष्ण के इस कार्य को देख रहे थे, और मधुमंगल ने देखा कि कृष्ण ने अभी अपनी बांसुरी बजाना शुरू कर दी, उन्होंने कहा ये बांसुरी मत बजाओ, बाहर इतना बारिश जा रहा है, तुम्हारे बांसुरी के द्वारा पिघल जाए गोवर्धन तो हम सब फिर हाँ बह के चले जा सकते हैं, चले जाएंगे। तो सारी गोपिकाएं जब बैठी थी श्रीमती राधिका आदि, तो कुछ गोपिकाएं श्रीमती राधिका को कहती है कि आप कृष्ण की ओर मत देखना, हाँ कृष्ण की ओर आपका जो दृष्टिपात है उतना प्रभावशाली है कि कृष्ण क्या करने लगते हैं, टलमल करने लगते हैं, हाँ इसलिए उनके सर के ऊपर गोपिका एक घूंघट डाल देती थी कि नहीं। और कृष्ण का वास्तव में थकान आ रही थी, पसीने छूट रहे थे, गला सूख रहा था, वो केवल किसके मात्र से, श्रीमती राधिका क्या एक दृष्टिपात के मात्र से। इस प्रकार से सारे जो ब्रजवासी हैं हाँ विशेष रूप से मधुमंगल आदि जो सखा हैं वो बहुत हाँ भगवान की प्रशंसा कर रहे थे, और सारी गौवें, आप देखो पूरे 7 दिन 7 रात भगवान ने गोवर्धन को धारण किया, कोई कुकिंग नहीं हुआ उस समय, कोई प्रसादम कुक नहीं हुआ, शास्त्र वर्णन करते कि गौवों को ना भूख लगी ना प्यास लगी, और ब्रजवासी मतलब पशुओं को ही नहीं लगी, तो जो मनुष्य आदि थे ब्रजवासी गण थे जिनका प्रेम कृष्ण के लिए सर्वोत्कृष्ट है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, उनको भी भूख प्यास ने नहीं परेशान नहीं किया। इस प्रकार से सारे ब्रजवासी गण कृष्ण के साथ निवास करने लगे। और अपने प्रेम का आदान प्रदान करने लगे। लेकिन यशोदा माता सबसे अधिक दुखी थी। वो हमेशा बीच में कहा करते थे कि बहुत लंबा समय बीता बेटे, तुमने अभी तक भोजन नहीं किया, तुम उदासीन हो जा रहे हो, तुम्हारा शरीर क्षीण हो रहा है, पेट पतला हो रहा है। माता को ये सारे लक्षण नजर आते हैं। तुम्हारे कपड़े ढीले हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, देखो देखो गायें भी नहीं घास खा रही है, क्योंकि कौन नहीं खा रहे हैं, तुम नहीं खा रहे हो। तुम ये ना ये वेणु का वादन करना बंद कर दो, ये निकालो अपने मुंह से, कुछ खा लो। देखो मैंने कितनी अच्छी मलाई दही मक्खन, हाँ बलराम के साथ बैठ के खाओ तुम, हाँ ये सखाओं के संग में। तो यशोदा माता इस प्रकार से हाँ कृष्ण को एंकरेज कर रही थी। तो फिर मधुमंगल कहते कि ठीक है, अपने माँ के वचन का पालन करो, हाँ कुछ तो खा लो, तुम इतने भूखे हो गए हो। तो फिर भगवान कुछ चीजें ग्रहण करते हैं और सारा ब्रजवासी गण गोवर्धन के नीचे बहुत आनंद में थे। तो उस समय एक ही व्यक्ति परेशान था, कौन था वो व्यक्ति? इंद्र। इंद्र, इंद्र का दूसरा नाम सहस्राक्ष है, जिनके शरीर में हजारों क्या है आंखें हैं। तो इंद्र इतना परेशान था, उन्होंने अलग अलग दूतों को भेजा कि जाओ न्यूज लेके आओ, लाइव टेलीकास्ट। उस समय तो इतने सारे टीवी चैनल नहीं होंगे, वो अपने अपने कुछ लोगों को भेजते थे, वो जाता था और आता था, बताता था कि मैं गया। उनका एक दूत जाता था, देखता था कि अरे गोवर्धन के ऊपर गया, वहां तो आराम से मयूर हिरण आदि सब आराम से घास खा रहे घूम रहे, वहां का पानी का एक बूंद भी नहीं गिर रहा है उनके ऊपर, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र ऊपर क्या हो रहा था, घूम रहा था। और जैसे पानी की बूंद आती थी, जिस प्रकार से तवा गर्म हो जाता है उसमें पानी छिटक दो तो क्या होता है, उड़ के चला जाता है, उसी प्रकार से गोवर्धन के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिर रहा था। एक दूत ने इंद्र के कहा कि मैं वृंदावन के अंदर गया ब्रज में, वहां चींटियां भी आराम से घूम रही है, मुझे तीन पत्ते भी गिरे हुए भी नजर नहीं आए। तो इंद्र का टेंशन और बढ़ रहा था, हाँ क्या कहते, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। कोई व्यक्ति जान पूछ के परेशान करता है किसी को, अरे यदि नहीं हो तो ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, हाँ। तो इंद्र के साथ वैसे ही हो रहा था कि इतना मैंने कष्ट दिया, अतिवृष्टि की, उसका वज्र आदि चलाया, फिर भी कितनी बड़ी बड़ी ओलों शिलाओं को गिराया, बिजली गिराई, मेघों को गिराया, लेकिन फिर भी कुछ परिणाम नहीं हो रहा है, और कृष्ण सदैव खुश है, आनंद मग्न है। तो फिर हाँ कृष्ण ने क्या किया, यशोदा माता के द्वारा सारा भोजन आदि ग्रहण किया, और इंद्र भगवान को समझ जाता है कि ये मेरी गलती है, और भगवान के चरणों का शरण ग्रहण करने का प्रयास करता है। तो फिर भगवान ने तृतीया से लेकर नवमी तक, तृतीया चतुर्दशी पंचमी षष्ठी, हाँ नवमी तक धारण किया, और दशमी को क्या हुए, सारे लोग बाहर आ गए। तो भगवान ने कहा सारे निकलो, अपने गवों को लेकर बाहर निकलो, ब्रजवासियों को लेकर निकलो, सब बाहर निकल रहे थे। और फिर कृष्ण हाँ अपने उस गिरिराज को अपने स्थान में रख के बाहर आते हैं, अपने वेणु का वादन करते हुए, और हर ब्रजवासी जो सीनियर गोपिकाएं थी वो अपने पास दही मक्खन ले आकर कृष्ण को खिला रही है, और सारे जो ग्वाल सखा आदि है कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं, कोई उनका चुम्बन कर रहा है। तो इस प्रकार से ब्रजवासियों को कृष्ण अपनी इन दिव्य लीलाओं के द्वारा आनंद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान इस लीला से कई प्रकार की हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। एक तो शिक्षा है, भगवान ये सिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपना जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है, अपने जीवन को सफल करना है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, परम भगवान देवताओं की उपासना को छोड़कर भगवद उपासना को स्वीकार करना चाहिए। हाँ क्योंकि अलग अलग गुणों के अनुसार अलग अलग लोग भगवान की पूजा करते हैं। सत्वगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग भूत पिशाच आदि की पूजा करते हैं, तमोगुणी और निकृष्ट चीजों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कहना हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठते हुए क्या करना चाहिए, परम भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवत भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण और एक शिक्षा देने के लिए गोवर्धन को धारण करते हैं, क्या कि वास्तव में मेरे चरणों का आश्रय ग्रहण करना है तो आपको मेरे भक्तों का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। गोवर्धन क्या है, भगवान के भक्त हैं, बल्कि भगवान भी वो गोवर्धन के नीचे उन्होंने खुद शेल्टर लिया और सारे भक्तों को भी क्या किया, उनके चरणों में शेल्टर दिलाया। तो इस प्रकार से गोवर्धन लीला जो बहुत अधिक फेमस है कृष्ण के चरित्र में, और भगवान ने 7 दिनों तक 7 रात इस गोवर्धन को धारण किया था अपने भक्तों को एकमात्र आनंद प्रदान करने के लिए। गिरिराज दरन के हरे कृष्णा। तो आप कुछ समय के लिए हम एक वीडियो देखेंगे गिरिराज लीला का 5 मिनट के लिए। गोवर्धन परिक्रमा का आज हमें कवर करना था वो विषय, लेकिन हम नहीं कर पाए, तो अगली बार हम कुछ विषय कवर करेंगे इसमें। इस प्रकार से भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे गिरिराज के ऊपर, उनको जो सारे व्यंजन ऑफर किए गए थे उसको उन्होंने स्वीकारा था ब्रजवासियों के द्वारा, और फिर गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। सारे ब्रजवासी गण भगवान के निकट है और सबकी जो आंखें हैं एक ही चीज का पान कर रही हैं, कृष्ण के सौंदर्य को पी रही हैं, और भगवान गिरिराज को धारण करते हैं। तो अगली बार हम इस पर चर्चा करेंगे। मैंने इंद्र किस प्रकार से भगवान की शरण लेता है, क्षमा याचना करता है, उसको डिस्कस नहीं किया। और एक परिक्रमा में प्लेस है गोविंद कुंड, वो उस स्थान में वो इंद्र आते हैं, तो उस समय डिस्कस करूंगा। अगले हम बार हम परिक्रमा का चर्चा करना शुरू करेंगे। 3 प्रकार की परिक्रमा होती है, परिक्रमा के 3 मार्ग हैं, तो उन सब चीज़ों को अगली बार डिस्कस किया जाएगा, और किस प्रकार से व्यक्ति को परिक्रमा करनी चाहिए और क्यों परिक्रमा करनी चाहिए, ये 3 प्रश्न होंगे प्रमुख जो अगली बार हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। परिक्रमा कौन करता है, परिक्रमा क्यों करनी चाहिए, परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, आगे उन चीज़ों को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम अपने जो प्रमुख विषय हैं हमारी चर्चा के, उनको फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ जो हमने कवर किए थे। पहले हमने सुना था वृंदावन धाम का परिचय, धाम, धामी और धामवासी आदि क्या होता है, तीर्थ और धाम में क्या अंतर है, वृंदावन कैसे सर्वोत्कृष्ट धाम है, और दूसरा हमने चर्चा किया था गोवर्धन आध्यात्मिक जगत में कैसे प्रकट हुआ, और गोवर्धन भौतिक जगत वृंदावन में कैसे आया, उसका प्राकट्य हुआ, गोवर्धन हरिदास वर्य दासों में सर्वश्रेष्ठ कैसे हैं, चैतन्य महाप्रभु का गोवर्धन के प्रति प्रेम, और फिर आगे हम ये टॉपिक लेंगे परिक्रमा क्यों और कैसे करें, और फिर शुरू करेंगे अगली बार से आगे आने वाले कई संडेज में गोवर्धन के जो 64 लीला स्थलियाँ हैं। गोवर्धन में आप जाते हैं तो हर प्लेस में लीला स्थली है, हर प्लेस में दिव्य स्टोरी है, उस लीला स्थली का फोटोग्राफ होगा और साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल विस्तार करते हुए हम जाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप क्या करिए, इस चीज़ को मिस मत कीजिए और प्रयास कीजिए कि आप समय पर आए। तो अभी हम कुछ मिनट के लिए गोवर्धन लीला को देखेंगे, शायद थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है। तो ये गोवर्धन धारण की लीला है।
साउंड चाहिए, हाँ वो है।
तो सब लोग चांट करें, हरे कृष्णा 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 हरे।